ان نفر، اچھا پھر ہم نے یہ پڑھ لیا، ومن آیاتی ہی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کیا، خلق السماوات والارض، تخلیق آسمانوں کی اور زمین کی، آسمان اور زمین کی تخلیق بھی، سبحان اللہ، آسمان کی طرف دیکھیں اور جتنا کچھ بھی آسمانوں میں بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر کتنے ستارے سیارے ہیں اور کتنا، یعنی اس کا نظام، اس کا جو سارا سسٹم کتنا آرگنائزڈ چل رہا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک پارٹی ہم نے کرنی ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں کو ہی گیدر کرنا ہوتا ہے، اتنے انتظام، اتنے یہ، پتہ نہیں کتنے عرصے سے ہماری اس کی پلاننگ شروع جاتی ہے، پھر کتنے اس میں کام ہوتے ہیں، لوگوں کو تو نہیں پتا چلتا، پیٹھ پیچھے کتنی چیزیں ہو رہی ہوتی، کتنی یہاں پہ بات کرنی ہے، وہاں کرنی ہے، یہ چیز صحیح ہے، اتنے سے لوگوں کو گیدر کرنا، اور کہاں یہ اس کا آسمان میں اتنے ستارے ہیں، اتنے ستارے ہیں کہ آج تک انسان گن نہیں سکا، پتا ہے آپ کو، گن نہیں سکا، بس ٹریلین ٹریلین کہہ دیتے ہیں، ٹریلین ٹریلین، وہ ان کے پاس اس کے بعد نمبر ہی نہیں بیچاروں کے پاس، انسان کی تو یہ حد ہے نا، اس کی علم کا بھی کی بھی ایک حد ہے، اس کی گنتی کی بھی ایک حد ہے، وہ کیسے اس سے آگے جائے، اور اللہ تعالیٰ ان ساروں کو رکھے ہوئے، ان کی ایک مجلس ہے ستاروں کی، سیاروں کی، دیکھو کیسے ہارمنی سے چل رہے ہیں، کیسے ان کا انتظام ہے، کتنے آرگنائزڈ ہیں، مجال ہے کوئی ادھر سے ادھر ہو جائے، آسمان نہیں گر پڑتا زمین پہ آ کے، اور زمین کو دیکھو اندر اس کے لاوا ہے، کیسے ہمیں اپنے اوپر رکھے ہوئے، کیسے گردش کر رہی ہے، کیسے ہماری ساری ضروریات اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے اندر رکھ رہی ہیں، کھا بھی اسی سے رہے ہیں، پی بھی اسی سے رہے ہیں، اسی کے اندر چل پھر رہے ہیں، اپنی معاش تلاش کر رہے ہیں، مر کے بھی اسی کے اندر جا رہے ہیں نا، ساری ضرورتیں اسی میں رکھ دی، کہیں کسی اور پلانٹ سے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو کبھی، فوڈ یا آکسیجن یا کچھ اور چیز، واختلاف السنتکم والوانکم، اور اختلاف تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا، سبحان اللہ، کل جب میں نے یہ آیت دیکھ رہی تھی تو میں نے پھر اس کے اوپر سرچ کیا کہ کتنی زبانیں ہیں دنیا کے اندر نا، تو پتہ چلا ایک سروے کے مطابق 6909 اور ایک کے مطابق 6500، یعنی 6000 سے اوپر زبانیں ہیں اس دنیا میں زمین پہ بولی جانے والی، اور آپ حرم پہ میں جب جاتے ہیں تو چونکہ وہاں پہ ہر ایک رنگ و نسل کے لوگ ہوتے ہیں، مجھے تو اتنے میں مسمرائز ہوتی ہوں کہ لوگوں کے منہ کی طرف دیکھتی رہتی ہوں کہ یہ کیا بول رہے ہیں، اچھا ہیں وہی چیزیں، وہی یعنی الفابیٹس ملتے جلتے ہی ہیں نا، ایک ہی زبان ہے، اسی سے ادا ہو رہے ہیں وہ، لیکن کیا وہ الفاظ بن رہے ہیں کہ ہم بالکل بلینک ہو جاتے ہیں، بالکل بلینک، ہمیں کچھ نہیں پتا یہ کیا بندہ کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ کچھ اور لوگ ہیں جو اس کی زبان سمجھ رہے ہیں، یہ زبانوں کو اختلاف کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے، سبحان اللہ، ایک بندہ اگر دو سے تین زبانیں جان لیتا نا تو فخر ہی بہت کرتا، جی اس کو اتنی زبانیں آتی ہیں، جی اس کو تین آتی ہیں، اس کو چار آتی ہیں، میکسیمم اتنی آ جاتی، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی زبانیں پیدا فرمائی، اور وہ ساری زبانوں کا جاننے والا ہے، کسی زبان میں بھی اس کو پکارو وہ سمجھ سکتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس وقت میں یہی ہمیشہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تجھے ہی پتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہوگا، یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ بندی کیا بول رہی ہے، یعنی ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے بالکل، کوئی چائنیز، کوئی رشین، کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں کی کیا کیا زبانیں، ہمیں تو ان کے نام بھی نہیں آتے، چیدہ چیدہ ایک دو چار زبانوں کے نام آتے ہیں جو دنیا میں زیادہ ہمیں ذرا پتہ ہے، باقی ہمیں 6000 سوچیں 6500 بھی اگر کہہ لیں، 6500 زبانیں ہمیں تو نام بھی نہیں پتا زبانوں کے، کہاں ان کو سمجھنا، کہاں وہ کیا، اور زبان کتنی زبردست چیز ہے کہ سبحان اللہ، آپ کبھی کبھی ہم چھوٹے ہوتے یہ گیم کھیلتے تھے نا کہ ایسے ایسے اشارے کریں تو بھائی گیس کرو میں کیا کہہ رہی ہوں، یا کسی کو بتا دیا اچھا یہ اس چیز کا اشارہ کر کے دکھاؤ، اچھا تو سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اشارے کر کر کے ہلکان ہوتے ہیں، کبھی آنکھوں سے کبھی ہاتھوں سے، کوئی سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہے، لیکن زبان کتنی پیاری چیز ہے کہ آپ اپنے سارے جذبات اس کے اندر رکھ کے بتا سکتے ہیں دوسرے کو میں کہنا کیا چاہتی ہوں، سبحان اللہ، اور انسان جب بول دیتا ہے نا تو جیسے یعنی مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو دوسرے کو بھی پوری بات سمجھ آ گئی، اب سوچو یہ زبان نہ ہوتی تو کیا کرتے ہم، کتنا سمجھاتے ہم، اب آپ کو جب کسی کی زبان نہیں ہوتی، مثلاً کچھ لوگوں کی مثال کے طور پہ اسپینش ہے یا کچھ ہے، اب وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں یا تو اب آپ ان کو اشاروں سے کچھ سمجھاتے رہے ہیں، آپ دماغ اپنا آپ کا کھپ جاتا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی، سمپل بات نہیں، کوئی ایسی نہیں کوئی بہت لمبی ان کے ساتھ داستانیں ہوتی، کوئی سمپل بات ہی سمجھانی ہوتی، یہ کرو یہ کر نہیں کرو یا یہ، वो एक घंटा आप लगे रहते हैं और आपको वो उन तक नहीं बात जा रही थी, वो कुछ कहते हैं तो आप सर पकड़ लेते हैं, आपको नहीं समझ आ रही थी कहना क्या चाह रही है। देखिए ये जुबान कैसी प्यारी चीज है कि ये फासले खत्म कर देती है। जब आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं ना तो ये आपके फासले दूर हो जाते हैं। इसीलिए आप देखें बाज मुशरिक हैं, बुत परस्त हैं, उनकी जुबान और हमारी जुबान चूंकि सेम है तो हम उनके साथ फिर ऐसे लगता है थोड़ी देर ही मिलने के बाद ऐसे लगता है कि हमें इनकी सारी बातें समझ आ गई, इनको भी आ गई और आप बड़े उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिसके साथ आपको जुबान ही नहीं आती चाहे जितना भी आपकी क्लोजनेस हो जाए, आपके मजहब वाले ही क्यों ना हो, आप बस अजनबी अजनबी से रहते हैं। तो जुबान अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत है, अल्लाह ताला ने कैसे ये एक उन्हीं अल्फाज को कोई ऐसे उल्टा पुल्टा करके किसी तरह करता है और वो एक माना बन जाता है, एक मतलब बन जाता है और आप उसके मुंह को देखते रहते हैं, आपको हूं गां के अलावा कुछ नहीं समझ आती कि ये क्या 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 रहा है। सुभान अल्लाह, आप उसी किस्म के अल्फाबेट अदा भी करना चाहें, जैसे कई लोग अरबी बोलना चाहते हैं और उसको उन्हीं एक्सेंट में बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अरबी के अल्फाज थोड़ी होते हैं, उस वक्त क्या लग रहा होता है, हंसी ही आती। देखो सुभान अल्लाह, अल्फाबेट्स वही हों भी आप वही भी यूज कर लें, उनका मतलब उनका माना उससे बना देना और एक इंसान को समझ आनी शुरू हो जाए दूसरे को आपकी बात, कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, कितनी बड़ी निशानी है उसकी, कभी आपने इसको सोचा, इसको निशानी समझा, अल्लाह तो हुई है जिसने बनाई है जुबाने, ये लुगात ये डिक्शनरीज किसी और जानदार के पास ऐसी नहीं है, कोई आपने बकरियों को आपस में ऐसे बातें करते नहीं देखा होगा, अपना दिल खोल कर रख दे, अपने दुखड़े बयान कर रही है एक दूसरे से, शिकायतें कर रही हूँ एक दूसरे को, ये इंसान ही है जो ये सब कर सकता है। सुभान अल्लाह, वह अलवानिकुम और तुम्हारे रंगों का, अच्छा देखिए आप रंग का जिसको आप कहेंगे ना क्या इसके लिए वर्ड होगा, यानी उसकी टोन तो नहीं कह सकते मगर फैमिली एक ही है, यानी ब्लैक से वाइट की तरफ जाते हुए या वाइट से ब्लैक की तरफ आते हुए, कोई लाइटर है कोई वो है, कोई वीटिश है कोई थोड़ा सांवला है कोई बिल्कुल स्याह है कोई कुछ है, किसी का रंग रेड नहीं है, ब्लू नहीं है, ग्रीन नहीं है, इस इन फैमिली से किसी का रंग नहीं, इसके बावजूद हर एक का रंग मुख्तलिफ है, एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं सबके थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं कम्प्लेक्शन, सुभान अल्लाह, और फिर देखें उन्हीं रंगों की वजह से फिर कौमें बन जाती हैं, इन्हीं जुबानों की वजह से कबीले और कौमें बन जाती हैं, है ना, और सुभान अल्लाह लैंग्वेजेस में भी देखें कि कुछ फासले के बाद आप दूर चले जाएं वही इंग्लिश है लेकिन आप देखेंगे एक्सेंट चेंज हो जाता है, अब यहाँ से यूरोप उठ के चले जाएं तो वहां भी आपको इंग्लिश ही बोलेंगे, समझ ही नहीं आती कैसी क्या एक अजीब सी अंग्रेजी बोल रहे हैं, आप अपने मुल्क में देख लें उर्दू देख लें एक इलाके में बोली जाती है तो दूसरे में आगे जाएंगे उर्दू ही होगी, वो बोलने का तरीका उनका अजीब सा डिफरेंट होगा, उनका एक्सेंट डिफरेंट होगा, तो ये भी एक्सेंट्स का भी फर्क है, रंगों के ऐसे फर्क हैं। और सुभान अल्लाह मैं सोचती थी अगर अल्लाह ताला हमारे रंग कोई रेड या ब्लू या ग्रीन या ऐसे कोई रंग हमारे बना देता उसके ऊपर हम क्या कपड़े पहनते, फिर उनके ऊपर हम जो पहनते फिर उसके मुताबिक देखना, अल्लाह ताला ने इतना न्यूट्रल सा हमें कलर दे दिया, अब जो भी पहन लेते हैं जज जाता है, सुभान अल्लाह। तो ये रंगों के एक दूसरे के देखें आप, एक बिल्कुल अफ्रीकी स्याह काला होता है, एक अंग्रेज बिल्कुल गोरा दूध की तरह सफेद होता है, कितना बड़ा यानी इंसान ही है ना, एक ही आदम और हव्वा से पैदा हुए हैं, वरना वो कहते हैं भाई या माँ पे जाता है या बाप पे जाता है, एक आदम और हव्वा से पैदा हुए हैं, सोचे आप लेकिन कितना बड़ा फर्क, सुभान अल्लाह। इन्ना फी ज़ालिका लआयात लिलआलमीन आलिमीन, इसमें निशानियां इल्म वालों के लिए जो गौर व फिक्र करें, गौर व फिक्र करने के लिए इल्म जरूरी होता है, पहले आया ना गौर व फिक्र करते हैं, अब आलिमीन इल्म वालों के लिए, इल्म हासिल करोगे तो गौर व फिक्र करोगे ना, गौर नहीं करते तुम, अगर गौर करो तो इससे भी रब को पहचान लोगे, ये भी रब की निशानी है, इससे भी तुम्हें रब याद आ जाएगा, उसको पालोगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह तुझे तो किस किस तरह हमें समझाया है, हमें सिखाया है, हमें दिखाया है, देखो ये भी मेरी निशानी, वो कैसे हैं वो बदबख्त जो फिर भी कहें कि कोई खुदा नहीं है, कितने बदनसीब हैं वो लोग जिन्होंने उस प्यारी जात को ही ना समझा, उसको ही ना पाया, ये सब कुछ देख के भी, न मिन आयाति ही मनामुकुम, और देखो तुम देखते नहीं हो, तुम सो जाते हो, बिल्लैली वन नहार, दिन को भी और रात को, रात को आप डीप स्लीप में होते हैं, दिन में आप नैप लेते हैं। अब ये जो नौम है ये भी अल्लाह की ऐसी निशानी है सुभान अल्लाह कि ये आप सोए हुए इंसान को देखें ऐसा लगेगा जैसे मरा हुआ है, सिर्फ सांस चल रही होती है, ना उसको कोई सुन रहा है, ना वो कोई देख रहा है, ना वो उसको अपनी इर्द गिर्द की कोई खबर है, लेकिन स्टिल वो जिंदा है और उठ जाता है फिर। और कैसी नींद एक चीज है सुभान अल्लाह कि इंसान थका टूटा होता है और बिस्तर पे जाता है, सो जाता है और उठता है, इतना फ्रेश होता है, सारी थकान दूर हो गई। कैसे दूर हुई? ना कोई गोली खाई, ना कोई कुछ और किया, सो गए, बस सो गए। तो अल्लाह ने जिस्म का निजाम ऐसा बनाया, सारे रिपेयरिंग रिपेयरिंग हो रही है सेल्स की और सब हो रहा है और ठीक ठाक करके फिर जो उठ के चाको चौबंद हो गया। कैसी चीज अल्लाह ताला ने बनाई। और ये छा जाती इंसान पे, देखे वो कहते ना कि नींद तो सूली पे भी आ जाती, क्यों कहते हैं? इससे इंसान इसके आगे बेबस हो जाता है, बेबस हो जाता है। नींद से पाक सिर्फ अल्लाह की जात है जो ऊंग और नींद से पाक है। इंसान तो इतना बेबस होता है, अल्लाह ताला माफ फरमाए ये जो क्रिमिनल्स को, वो उनसे कुछ चीजें उगलवानी होती हैं तो उनको फिर क्या जगाए रखते हैं, वो जगाए रखते हैं, ये टॉर्चर होता है एक, वो फिर रेजिस्ट नहीं कर पाते और सारा कुछ बता देते हैं। क्योंकि इंसान नहीं रह सकता इसके बगैर। फिर इंसान कहता है मुझे, अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ कुछ अरसे कुछ दिन आप ना सो सके हो, तो उसके बाद कहते हैं इंसान के ना मुझे खाना चाहिए ना पीना चाहिए, बस मुझे सोने दो, मैं सो जाऊं। इतनी इंसान की बेबसी हो जाती है इसके आगे, क्योंकि ये उसकी जिस्म की जरूरत है कि वो सोए, नींद भी उसकी जरूरत है। हम आज तक खाना पीना ये सोचते रहते हैं जब हम जरूरतों की बात करते हैं, कभी आपने ये सोचा कि नींद भी मेरी जरूरत है? अल्लाह को पता है इस मिट्टी के पुतले ने थक भी तो जाना है ना। सुभान अल्लाह, उसके आराम के लिए अल्लाह ने नींद बना दी, सुला दिया तुझे। तुम्हारा सो जाना भी बताता है कि कोई सुलाने वाला है तुम्हें। और ये नींद हम सोचते हैं हमारे इख्तियार में नहीं, इसीलिए कभी ऐसा भी होता है कि आप चाहते हैं सो जाना, नींद ही नहीं आती। आप गोलियां भी खा लेते हैं, नींद नहीं आती। कई लोगों को डॉक्टरों के चक्कर लगाते देखा, पता नहीं नींद का मसला है जी, नींद नहीं आती हमें, हम डीप स्लीप में नहीं जा पाते, या बस हम ऐसे ही बस ऊपर ऊपर की नींद सी होती है बस ऐसे हम, वो फिर उनकी थकान नहीं दूर होती। इसकी भी पूरी थेरेपीज होती हैं। इससे पता चलता है कि नींद भी अल्लाह ताला की तरफ से ही एक चीज है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद के लिए भी दुआ सिखाई है कि जिसको नींद नहीं आती तो उसके लिए ये दुआ वो पढ़े। सुभान अल्लाह। तो ये एक समझ लें आधी मौत में इंसान चला जाता है और ये अल्लाह ताला तारी कर देते हैं उसके ऊपर, जैसे छा जाती है नींद और वो हमें कुछ पता ही नहीं चलता। हम लेटते हैं, वो कब आई है, कहां से आई है, क्या चीज हुई है कि हमारी आंखें बिल्कुल बंद और हमें पता ही नहीं हम कहां चले गए। सुभान अल्लाह, कभी आपने इस पे गौर किया कि क्या चीज होती है? मैं लेटती हूँ और वो कब आ रही है, अच्छा आ रही कि नजर आ रही, किधर से आई, कुछ कहीं भी नहीं और मुझे पता भी नहीं चलता मैं कहां हूं। उसके बाद हमारे इर्द गिर्द कोई घूम के चला जाए, फिर के चला जाए, कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पता नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, कैसे अल्लाह ताला इल्म वाले को भी बेइल्म कर देता है उस वक्त, कैसे वो गाफिल हो जाता है, कैसे जहनी भी थकन दूर हो जाती, जिस्मानी थकन भी दूर हो जाती। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारी हमें रिफ्रेश करने के लिए कैसा एक नेचुरल निज़ाम रख दिया। वबतिगाउकुम मिन फदली, और तलाश करना तुम्हारा उसके फजल में से, यानी तुम्हारा जो रोजी तलाश करना है उसके लिए अल्लाह ने मुख्तलिफ असबाब पैदा कर दिए। तुम्हारे अंदर ये चीज तलब पैदा कर दी कि मैं सुबह को उठूं तो मैं रोजी तलाश करूं, तो ये भी अल्लाह की एक निशानी है। अल्लाह ताला ने रिस्क के असबाब जो रखे हैं और तुम्हारी जो इसको तलाश करना है ये भी निशानी है। तुम्हारे अंदर सलाहियत भी पैदा कर दी, ये भी एक निशानी। मिन फदली ही का मतलब क्या है? उसके फजल में से, यानी रिस्क तलाश करना। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमी यस्मऊन, इसमें निशानियां हैं उस उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। अच्छा, अब आप देखें, पहले कहा गया गौर फिक्र करते हैं, फिर कहा गया जो इल्म वाले हैं, फिर कहा गया जो सुनते हैं गौर से। जो एडमिन्स हैं वो म्यूट कर लें फोन को। तो जो गौर से सुनेगा वो इस नसीहत से फायदा उठाएगा, जो सुनेगा ही नहीं, जो एक काम से सुनता है दूसरे से निकाल देता है, उसको नहीं फायदा होता। तो किसी को तो सुन के रब की मार्फत हासिल हो जाती है, और कोई सुनता भी है तो ऐसा सुनता है कि सुनी अनसुनी करती। ये गौर से सुनने की बातें, जब इंसान गौर से सुनेगा तो क्या होगा, इल्म हासिल होगा, इल्म हासिल होगा तो क्या होगा, गौर व फिक्र करेगा। समझ आई ये कैसे चल रही है, एक आयत में गौर व फिक्र, फिर इल्म और फिर समाज। वमिन आयाति ही, और उसकी आयात में से है, युरीकुम वो दिखाता है तुमको क्या, अलबर्क बिजली, वो ये भी उसकी निशानियों में से है कि बिजली, कभी आपने सोचा है ये बिजली कैसे बनती है, बादलों से बनती है, बादल कहाँ से आते हैं, वो कहाँ से आ गए आसमान पे, अच्छा पता नहीं ये पानी सुना है कि समुद्रों से उठता है, ऊपर जाता है, भाप बनता है ऊपर, फिर बादलों की शक्ल में जाता है और बरसता है, अच्छा तो समुद्र से कौन उड़ाता है इस पानी को, हाँ जी वो सूरज चमकता है ना तो उससे वो भाप बनता है ऊपर जाता है। अब इस सूरज को किसने ये हुक्म दिया, सूरज को किसने बताया कि ऐसे करना है, पानी उठाना है और लेकर जाना है, कोई जहाज तो हमें नजर नहीं आता कि जो पानी समुद्रों से उठा उठा के ऊपर लेकर जा रहा है, सूरज के पीछे कौन है जो उसको बता रहा है, और ये पानी के पीछे कौन है जो इसको उठा रहा है, सूरज किसके इरादे पे कर रहा है, समंदर किसके इरादे के ऊपर ये अपने पानी को ले जाने दे रहा है, बादल किसके इरादे से चलते हैं, या सारा कुछ खुद ही होता जा रहा है, सूरज की मर्जी आई वो एक दिन उठा और उसने ये सोचा कि मैं ऐसा करूं, और बिजलियां कड़कती हैं, और फिर वो तुम्हारे लिए क्या खौफ और तमा का बाइस बनती है, खौफ के साथ और उम्मीद के साथ। जब बिजली कड़कती है तो वाकई खौफ तो आता है, लेकिन साथ ये भी होता है ना कि अच्छा अभी बारिश आने वाली है, खास तौर पे जब कोई खुश्क साली हो क्या है तो, या ऐसे कई दिन से बारिश ना हुई है तो एक खुशी सी भी हो जाती कि अब बारिश होगी। सुभान अल्लाह ताला दिखाता है ना, जब इंसान खौफ की कैफियत में होता है ना साथ ही उम्मीद भी दिला देता है अल्लाह ताला। आपने देखा कुरान में भी जहाँ पे कोई खौफ की बात आती है, जहाँ पे जहन्नुम की बात आती है, वहाँ पे उम्मीद की भी बात आ जाती है। इसी तरह ईमान भी खौफ और उम्मीद के दरमियान की चीज़ है। आपने देखा होगा कई दफ़ा ऐसा होता है इंसान इतना खौफ ज़दा हो जाता है अपने गुनाहों को सोच के, अपने अमाल को सोच के, या अल्लाह मेरे पास है क्या, मैं किधर जाऊँ, क्या मेरा बनेगा, उसी वक़्त कहीं से उम्मीद की ये किरण आ जाती है कि अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है, कहीं उसकी रहमत से भी बढ़ के कोई मेरे गुनाह हो सकते हैं, नहीं। तो खौफ और उम्मीद ये साथ साथ चलने वाली चीजें, कहीं जहां खौफ आता है अल्लाह साथ ही उम्मीद दिला देता है, देखो बारिश भी तो आ रही ना, तो ये सब उसके कुन कहने से हो रहा है, इस उस रब के इरादे से हो रहा है। वयुनज़िलु मिनस समाई माअन, और वो उतारता है आसमान से पानी, जो वाटर साइकिल अगर आप उसको स्टडी करें तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी आपको पता चलती है। फयुही भी अर्द बाद मौती है, और देखो कैसे जमीन को वो जिंदा कर देता है उसकी मौत के बाद, जमीन तो मुर्दा पड़ी हुई थी, डेड थी, उस पर कोई सब्जा नहीं था, वो जिंदा हो गई। इससे क्या पता चलता है, इसका मतलब जमीन भी कोई जिंदा मखलूक है जो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाती है, जो अल्लाह के हुक्म को सुनती भी है फिर मानती भी है, और कितनी फरमावरदार है अल्लाह की, हुक्म आता है और मान जाती है और जिंदा हो जाती है। सुभान अल्लाह, इसे जमीन का भी, वैसे तो वो कहते हैं ना साइंस की जमीन एक डेड चीज है, नॉन लिविंग चीज है, लेकिन देखें यहां से पता चलता है मौत के बाद जिंदगी, इससे ही इसे पता चल जाता है कि वाकई जमीन भी कोई जिंदा होने वाली चीज है। वो जो मुर्दा जमीन को जिंदा कर सकता है ना, वो हमारे मुर्दा दिलों को भी जिंदा कर सकता है, हमारे दिल जो मुर्दा हो चुके हैं अल्लाह इनको भी जिंदगी दे सकता है, जो जो दिल मुर्दा हो चुके हैं कोई गमों की वजह से अल्लाह उनको भी खुशियां दे सकता है, आज के गम कल की खुशियां बन सकते हैं, उसमें बदल सकते हैं। जो रब मुर्दा जमीन को जिंदा कर सकता है वो क्यों नहीं कर सकता किसी मुर्दा दिल को जिंदा, बेशक कर सकता है। अब बताएं कि इंसान का कितना दखल है सूरज को चमकाने में, समुंदर को भाप बनाने में, या पानी को बरसाने में, या जमीन से उगाने में, कितना दखल है इंसान का, फिर करना क्या चाहिए। इनमें से तो किसी पे इंसान का बस नहीं है, किसी ना बिजली चमकाने में, ना बारिश बरसाने में, ना जमीन को जिंदा करने में। फिर इंसान ये कुछ भी नहीं इनमें से कर सकता, तो कर क्या सकता है? फिर वो ये कर सकता है कि इन बिजलियों के चमकने से अपने रब को पहचान ले, जमीन के जिंदा होने से रब को पहचान ले, बारिश के बरसने से रब को पहचान ले। बारिशें तो रोज होती रहती हैं, हम उसके बाद सर्दियों के बाद जब बहार आती है, स्प्रिंग आता है, तो हम देखते हैं जमीन कैसे जिंदा हो जाती है। इन हमें कितनी दफा ये ख्याल आता है कि मेरे रब ने किया ये सब कुछ, उसका फैसला चल रहा है इसके पीछे, और वो अकेला ही करने वाला है और कोई इसके साथ शरीक नहीं। इन्ना फी ज़ालिका लआयात लिक़ौमिन याक़िलून। और ये सब देख के कितने ऐसे लोग हैं जो कि फिर रब को पहचान के उसके आगे झुक जाएं, उसके शुक्र गुजार बन जाएं। इसमें निशानियां उस कौम के लिए जो अकल रखती हो, जिसमें सोचने समझने की सलाहियत हो, सोचने वाले अकल वाले ही इससे सबक लेंगे। इसका मतलब वो बेअकल हैं जो इन निशानियों को देखें और फिर गुजर जाएं और कभी गौर ही ना करें और कभी सोचे ही ना और इससे रब को पाए ही ना। इसका मतलब है ये भी, ये जो निशानियां है ना आपके इर्द गिर्द फैली हुई, ये भी आपकी टीचर्स हैं, ये भी आपको कुछ सिखा रही हैं। और इसमें ये भी है कि देखें, जो किसी की निशानी होती है ना, जो किसी की पहचान कराती है, वो भी चीज प्यारी होती है, ये उसकी पहचान है। तो ये है हमारे रब की पहचान है ये सब चीजें, ये भी प्यारी लगने लगती हैं फिर, ये मुझे अल्लाह की याद कराती हैं। अमिन आयात ही, और उसकी निशानियों में से अंत अमरी ही, ये बड़ी जबरदस्त बात है कि उसकी निशानियों में से है कि आसमान कायम है और जमीन कायम है साथ उसके हुक्म के। ये उसकी निशानी है कि ऐसे ही कायम नहीं है। तुम सोचते हो सदियों से ही आसमान ऐसे ही खड़ा है, जब से हम पैदा हुए ऐसे देख रहे हैं, जमीन इसी तरह चल रही है अपने ऑर्बिट में और चलती चली जा रही है, आसमान में ये सूरज घूम रहा है तो घूमता जा रहा है, सितारे चल रहे हैं तो चल रहे हैं, सूरज चांद निकल रहा है तो निकलता है, ये बस सारे खुद ही ऐसे ही है, ये ऐसे ही कायम नहीं है। किसने इनको कायम किया था? इससे बड़ी हैरत होती है, इंसान की अकल दंग रह जाती है जब वो ये सोचता है। अब ये साइंसों ने तो सारी चीजें बता दी, शायद उस जमाने के लोग भी ना इसको इस तरह समझ पाए हो। जब साइंस ने बता दिया जमीन अपने मदार में घूमती है, सूरज अपने मदार में घूम रहा है, सब चीजें ये घूम रही हैं, जितनी चीजें, कोई भी स्टेशनरी नहीं है। इन गैलेक्सीज में सितारे हैं, सैारे हैं, और अब उन्होंने बताया भाई सूरज से भी बड़े बड़े कई सितारे हैं। सूरज तो आपका बहुत ही छोटी सी एक चीज है जिसको आप बहुत बड़ा समझे बैठे, ये तो कुछ भी बड़ा नहीं। हम कहते हैं कयामत के दिन सूरज इतना करीब होगा तो हाय ये सूरज, वो अल्लाह आलम कौन सा सूरज होगा, कौन सा सितारा होगा, कोई पता नहीं है। ये अल्लाह ताला के हाँ कि कितने सितारे हैं वो इसी तरह चमकने वाले और इससे बड़े बड़े। तो हमारे लिए सूरज कहना ना इतनी बड़ी चीज हो जाती है, हम सूरज को बहुत बड़ा समझते हैं और इसकी हीट को और इसकी सब चीज बहुत ज्यादा समझते हैं, यानी अल्टीमेट इसको ही समझा हुआ हमने, हालांकि इससे भी बड़े बड़े कितने इस कायनात में सितारे घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या लगती है जिससे अकल हैरान होती है, वो ये कि देखो घूम रहे हैं, कोई सड़कें क्या इनकी जिन जहाँ पे घूम रहे हैं, जिन जहाँ इनको क्या पता कि कहाँ पे जाना है, कोई रास्ते हैं इनके? अब साइंस तो बताती है कि हाँ भाई फिक्स रास्ते पे चल रहे हैं। किसने इनको सिखा दिया? इनकी स्पीड किसने मुतय्यन की? किसने इनको बताया इस स्पीड से? आज तक अल्लाह ताला रहम फरमाए, आज तक कोई आके टकरा क्यों नहीं गया इस जमीन के ऊपर? अल्लाह ने थामा हुआ है जनाब, ऐसे ही नहीं है। अब वो कुछ अरसा पहले उन्होंने कहा ये एक मीटियोर हमारी जमीन की तरफ ना बहुत तेजी से आ रहा है, और बस वो अब वो अगर ना रास्ते में कुछ हुआ उसको तो फिर आके टकरा ना जाए। कई सितारे आप देखते हैं कि वो शूटिंग स्टार्स होते हैं, टूट के गिर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, हमारी ज़मीन तक नहीं अल्लाह उनको पहुंचाता, उनको पहुंचने ही नहीं देता, वो बीच में ही टुकड़े टुकड़े होके ख़त्म हो जाते हैं, जल के कई ख़त्म हो जाते हैं, कई यानी बड़े बड़े रॉक्स हैं उसमें। कहीं फिजा में इतने बड़े बड़े रॉक्स फिर रहे हैं, अब वो आके क्यों नहीं टकराए जाते? वो पता है डायनासोर्स कैसे खत्म हुए थे? जमीन के ऊपर आके इसी तरह एक रॉक गिरा था और उसे इतना ज्यादा गर्द उड़ा कि सारी जमीन उसकी लपेट में आ गई और फिर ये सारे जानदार ही खत्म हो गए। अल्लाह चाहे तो ऐसा दोबारा हो जाए। आप कभी सोचते हैं कि इतना कुछ घूम रहा है इस कायनात में, इतनी बड़ी ये कायनात है, कोई किसी दिन जमीन आवारा होके बागी होके अपने मदार से क्यों नहीं निकल के चली जाती? कहीं सूरज ही कहीं चला जाए, चलो उसने ही आजकल नया रास्ता ढूंढ लिया, क्यों मैं इसी में घूमता रहूं? कि किसने इतना एक्यूरेट निज़ाम है सुभान अल्लाह, ऐसे है यानी इवन जो डेसिमल्स के बाद के फिगर्स हैं ना, इतनी एक्यूरेट स्पीड है कि जरा भी, और इतनी एक्यूरेट आपस के अंदर इनकी जो कशिश है, जरा भी इसमें फर्क पड़ जाए तो ये जमीन उठ के उड़ के तो सूरज के अंदर गिर जाए। आखिर वो भी तो इसको खींच रहा है, और जमीन की भी एक कशिश है ना, ये उड़ के उसके अंदर घुस जाती है ना, वो इसकी तरफ तेजी से दौड़ के आ जाता है और सबको निकल जाता है, वो तो आखिर बड़ा है ना। किसने कायम किया हुआ, कभी नहीं सोचा, ही ऐसे ही चल रहा है खुद से। आखिर हम समझते हैं सूरज बड़ा है तो जाके ले लेना, इसको निगल ले। अच्छा चलो चांद हमारे से छोटा, वो ही आके गिर पड़े इसके अंदर, वो छोटा जो है ये जमीन ही इसको खींच के ऊपर अपने ऊपर फेंक ले। नहीं, क्या इनके अंदर इतनी अकलें हैं, ब्रेन्स हैं क्या इनके पास? क्या इन्होंने इनके इंसान तो कैलकुलेशन करता है, या जमीन भी कोई कैलकुलेशन कर रही है? इतनी मेरी ग्रेविटी होनी चाहिए, इतना मेरे ऊपर प्रेशर होना चाहिए, ये सब चीज होनी चाहिए, ये जमीन भी कैलकुलेशन करती है? सोचिए सोचिए, यही तो बातें, ये आयात पढ़ने से ज्यादा सोचने की है, उनके ऊपर तदब्बर करें और अल्लाह को पहचाने। फिर मुझे दुख होता है कि उसके बाद क्यों क्यों ये कहते हैं कि खुदा नहीं है कोई। कि तुम कैसे कह सकते हो कि कोई खुदा नहीं है? कोई एक चीज भी इनमें से तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? इतनी सारी चीजें अभी तक देखें, बात आई है, कोई एक चीज भी नहीं समझ आई? अल्लाह अकबर। तो ये उसके हुक्म से है, क्योंकि जिस दिन उसका हुक्म ना होगा ना, तो इज समा उन शक्कत वाजनत ली रब्बीहा वहुक्कत वाइदल अर्दु मुद्दत वालकत माफीहा वतखल्लत। उस दिन तो ये हो जाना, और इज समा उन फतरत आसमान ही फट जाने। ये कब होगा? ये जिस वक्त अल्लाह तला का हुक्म खत्म हो जाएगा इसके लिए, अगर तू कायम रहे अभी तक अल्लाह के हुक्म में चल रहा है। जब अल्लाह का हुक्म नहीं होगा, देखो एक तबाही कैसे आती है, सितारे टूट टूट के गिर जाएंगे, बुझ जाएंगे, मांद पड़ जाएंगे, समुद्रों का हाल क्या होगा, आसमान का हाल क्या होगा, जमीन का हाल क्या होगा? ये तो कांप कांप के इसका जलजला ही खत्म नहीं होना, तो आज क्यों नहीं हो जाता? इसका मतलब आज किसी ने इसको कहा है कि नहीं होना। भाई देखें, आपकी जो आपने सड़कें बना ली हैं, आपने उनके ऊपर साइंस लगा दिए, आपने लेन्स बना दी, आपने स्पीड मुतय्यन कर दी, इसके बावजूद आए दिन रोड्स पे एक्सीडेंट होते हैं। तो अल्लाह ताला की इस कायनात में क्यों नहीं कोई एक्सीडेंट हो रहा? टकराते फिर हम ऊपर आसमान पे देखें, टकरा रहे हैं फलाने की आज जंग हो गई, वो उसके साथ टकरा गया, उस बड़े ने उसको आज मार लगा दी, उसने उसको पकड़ लिया, ये तो हमें कहीं भी नहीं नजर आ रहा। मैं तो कहती हूँ जमीन पे फसाद है, आसमान तो बड़ा पुरसकून है। आसमान की तरफ देखिए, सुकून ही सुकून मिलता है, चाहे घंटों आप देखते रहे सुकून। और जमीन की तरफ देखो, कियास अफरा तफरी, चीना झपटी, फसाद। पता चल रहा है ना कि ऊपर कोई है जिसने सारे निजाम को ऐसे हारमनी से चलाया हुआ, जिसने इसको थामा हुआ, जिसने इसको ऐसा कायम किया हुआ। और इंसान जब उस रब के, उस जात के हुक्मों से निकलता है, तो यहां पे फसाद ही फसाद है। वो सब फर्मा बरदार हैं, तभी देखो सारा सुकून है वहां पे, डिसिप्लिन है, ऑर्गेनाइज तरीके से सब है। यहाँ पे अपनी हदूद से निकल जाते हैं, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ते हैं, देखो यहाँ पे क्या हाल हो रहा है, खून खराबा और फसाद। सुम्मा इदा दाकुम दावतन मिनल अर्द इदा अंतुम तखरुजून। फिर जब वो पुकारेगा तुमको, पुकारना एक ही दफा पुकारेगा मिनल जमीन से, اذا انتم تخرجون، تم سب نکل کھڑے ہوگے. پھر ایک دن وہ پکار آئے گی، آج تو اللہ نے قائم کیا ہوا ہے نا، اس کے ارادے سے قائم ہے، لیکن ہمیشہ قائم نہیں رہیں گے. ایک ایسا دن آئے گا، ایک پکار آئے گی، پکارنا ہوگا تم کو. جب وہ پکارے گا، وہ کون؟ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اسرافیل علیہ السلام کو، وہ سور پھونکیں گے تو یہ ایک پکار ہوگی، تو آپ زمین سے نکلیں گے میں اور آپ. اور کوئی اس دن یہ نہیں کہے گا اب نہیں ہم نے نکلنا، ابھی تو ہم حکموں کو توڑتے ہیں، ابھی تو حیا علی الصلاہ آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں اٹھنا، نیند بہت آ رہی ہے. اس دن کوئی نہیں کہے گا نیند بہت آ رہی ہے، مجھے سونے دو میری قبر میں، ابھی نہیں میں نے اٹھنا. سب کھڑے ہو جائیں گے، سیدھے ہو جائیں گے تیر کی طرح. دیکھ لو انسان کے جسم کے اوپر بھی اس دن پتا چلے گا کہ اللہ کا ہی حکم چلتا ہے. آج یہ جو ہم اپنا حکم چلا رہے ہیں نا، یہ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں تھوڑی سی دیر کے لیے چوائس دی ہوئی ہے. اس دن سارے سیدھے ہو جاؤ گے، سیدھے ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے. اس دن اللہ تعالیٰ یہ چوائس لے لے گا تم سے واپس، تو دیکھ لو تمہارا اپنا وجود بھی تمہارے اس میں نہیں ہوگا. پھر تم یہ نہیں کر سکو گے کروٹ بدل کے سو جاؤ، الارم بند کر دو، کان بند کر کے سوئے پڑے رہو، سب کھڑے ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. جب انسان اس کھڑے ہونے کو سوچتا ہے نا، کبھی سوچا کریں بیٹھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جب سور پھونکا جا رہا ہوگا میں اپنی قبر سے اٹھوں گی، وہ منظر کیسا ہوگا؟ کبھی آنکھیں بند کر کے سوچا کریں کیسی افراتفری ہوگی، کون کون مجھے نظر آئے گا، کون کون سے میرے جاننے والے، سب کو ذہن میں لایا کریں. وہ کہاں ہوگا اور وہ کہاں ہوگا، اور وہ بھی نہیں میری طرف دیکھے گا، اور وہ جو ہمارے فوت شدگان ہیں وہ بھی آ جائیں گے، وہ بھی اس دن دوڑ رہے ہوں گے، لیکن وہ بھی اس دن میرے اوپر صدقے قربان نہیں ہو رہے ہوں گے. ان کو بھی اتنے عرصے کے بعد ملاقات ہوگی، اب تو باتیں ہونی چاہیے اور اب تو ایک دوسرے کا حال احوال ہونا چاہیے، وہ کب چلے گئے تھے، ہم تو ان کے بغیر بڑے روتے رہے تھے، لیکن آج تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس سارے کے بعد بات یہ ہے کہ جو بھی ہے نا یہاں، جو بھی آپ کو نظر آتا ہے، جو بھی آپ کے حواس محسوس کرتے ہیں، آسمانوں میں یا زمین میں، سب کا مالک اللہ ہی ہے، سب اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے، اسی کی ملکیت ہے. جو بھی آسمان میں کیا کیا سوچ لیں، جو بھی زمین میں کیا کیا سوچ لیں، پھر سوچ لیں کہ ہم مقابلے کس کے کرتے ہیں، ہم حکموں کو کس کے توڑتے ہیں. ہمیں کوئی کہہ دے کہ جی یہ فلاں ملک کا پریزیڈنٹ ہے، ہم اس قدر متاثر ہو جاتے ہیں. اچھا، اور وہ فلاں اتنا امیر ہے، اس کی تو اتنی جائیدادیں ہیں، اتنے متاثر ہو جائیں گے، اور فلانے کے پاس یہ گاڑیاں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ کتنے بڑے بنگلے میں رہتا ہے، اور اس کے گھر میں کتنی گاڑیاں ہیں، اور اس کے کتنے نوکر ہیں، تو گر جاتے ہیں ہم، اتنے ہم مرعوب ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے عہدوں سے مرعوب ہو جاتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، سبھی کچھ اس کا ہے، سبھی کچھ، تو تم مرعوب نہیں ہوتے. اور صرف اس کا ہے نہیں، کل لہو قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. کیا تم پھر فرما برداری نہیں کرو گے؟ اگر زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے، تو تم کدھر ہو؟ آسمان اور زمین میں کہیں تو تم بھی ہو نا، تم بھی اسی کی ملکیت ہو. یہ سب تو فرما بردار ہیں، کیا تم فرما برداری نہیں کرو گے؟ تمہارا جسم تو فرما برداری کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ تو نہیں، میں میری مرضی ہوتی ہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں، پیر ادھر رکھوں، گردن ادھر گھماؤں. اتنی اللہ نے تمہیں آزادی دی ہوئی، مگر یہ بتاؤ کہ تمہارا دل کس کے کہنے پہ دھڑکتا ہے، تمہارا میدا کس کے کہنے پہ کام کر رہا ہے، تمہارے گردے کس کے کہنے پہ چل رہے ہیں، تمہاری آنکھیں کس کے کہنے پہ دیکھ رہی ہیں، تمہارا دماغ کس کے کہنے پہ چل رہا ہے، یہ بتاؤ یہ کس کے حکم پہ ہیں. ہمارا تو دل نہیں چاہتا دل کبھی بند ہو، پھر بھی وہ بند ہو جاتا ہے، سنتا ہی نہیں ہماری، موت کا دن آ جاتا ہے، تو ہماری تو بس میں نہیں ہے یہ. ہم چاہتے ہیں ہماری سانس ہمیشہ چلتی رہے، कभी भी बंद ना हो, लेकिन हमारी सुनती नहीं है, पता नहीं चलता उस वक्त कि हम बेबस हैं। तो ये जिस्म भी, इसका निजाम जो है ना, इसका सिस्टम, ये भी अल्लाह का फर्मा बरदार है। जब अल्लाह ताला चाहता है तो ये काम करना बंद कर देता है। कितने ही लोग हैं दर दर फिर रहे हैं इलाज कराने के लिए, कभी कहीं कभी कहीं, एक जरा सी कमर का दर्द है उसी को लिए बैठे रहते हैं, सारी जिंदगी उसी से नहीं निकल सकते। तो पता नहीं चलता किसके ये फर्मा बरदार है। ये हमारे फर्मा बरदार नहीं है, हमारी तो इतनी सी, सिर्फ अल्लाह ने बहुत ही हमें लिमिटेड सा इख्तियार दिया, वो भी हमें आजमाने के लिए। हम उसी के ऊपर इतने फूले नहीं समाए, इतना तकब्बुर करने लगे कि हमने समझा कि हम खुदा ही बन गए, नाउज़ु बिल्लाह, ये हमने समझ लिया। तो तुम्हारे पास है क्या इख्तियार, इतना थोड़ा, तुम तो अपने खुद के जिस्म का भी नहीं इख्तियार रखते। इंसान कहता है मुझे कैंसर ना हो, उसको कैंसर के सेल्स उसके अंदर बढ़ने शुरू हो जाते। उसका जी चाहता है क्या कि ऐसा हो, दिल चाहता उठा उतार के अंदर से फेंक दे, नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं है उसके बस में ही नहीं है। ओफो, इंसान कितना कमजोर है, और वो मुकाबले किधर करता है। वाहुअल्लज़ी यब्दाउल खल्का सुम्मा युईदुहू, अल्लाह वो जात है जिसने इब्तदा की तखलीक की, फिर वो लौटाएगा इसको, याद रखना वो लौटाएगा। जैसे पहली दफा उसने बनाया था ना, उसी तरह दोबारा बना देगा, और वो दोबारा बनाना वह हुआ अहवनु अलैहि, और वो ज्यादा आसान है उस पर। देखो हम इंसान है ना, इंसान हमारे पास तो हालांकि बहुत थोड़ा पावर है, फिर भी हम एक चीज पहली दफा बनाते हैं थोड़ी सी मुश्किल होती है, फिर दूसरी दफा करते हैं तो हमारे लिए भी आसान हो जाती है, हालांकि हम इतना थोड़ा इख्तियार रखते हैं। अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है, उसके लिए तो पहली दफा बनाना मुश्किल नहीं, तो तुम सोच रहे दूसरी दफा बनाना मुश्किल हो जाएगा या इम्पॉसिबल होगा। वलहु المثل الاعلى في السماوات والارض, उसके लिए बुलंद मिसाल है, यानी सबसे बुलंदो बाला शान है उसकी आसमानों में और जमीन में, यानी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता उसकी शान में। जितने माबूदाने बातिल है ना, जितने अल्लाह के सिवा जिनको भी कोई लोग पूज रहे हैं, वो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मसल आला, अल्लाह के लिए बुलंद मिसाल, उसकी जैसे लैसा का मिसली ही शही, उस जैसा कोई है ही नहीं है, उसकी इतनी बुलंद शान है। वह अजीजुल हकीम, वो जबरदस्त भी है, गालिब है और हिकमत वाला है, वो इख्तियार रखता है और उसके सारे काम हिकमत पे मबनी है। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक मिसाल से बयान फरमाया है कि जो तुम शिर्क करते हो, शिर्क का रद्द किया है इस मिसाल के जरिए। फरमाया दरबलकुम मतलब मिन अनफुसिकुम, अल्लाह ताला बयान करता है तुम्हारे लिए एक मिसाल तुम्हारे अपने नफ्सों में से, तुम्हारे ही अंदर से एक मिसाल तुम्हें समझाने के लिए बताई जा रही है। क्या मिसाल है? हल्लकुम मिम्मा मलकत अईमानुकुम, क्या तुम्हारे लिए इसमें से जो मालिक हैं तुम्हारे दाने हाथ, यानी कौन, गुलाम, क्या तुम्हारे गुलामों में से, मिन शुरका फी मा रज़क़नाकुम, कोई शरीक हैं इसमें जो हमने तुम्हें रिस्क दिया कि आप अपने, यानी अपने गुलामों को शरीक कर दें अपने साथ उसमें जो अल्लाह ने आपको रिस्क दिया है, क्या कभी आप ऐसा करते हैं? फअंतुम फीहि सवाउन, के आप दोनों बराबर हो जाएं, आपका एक गुलाम है मसलन, चलो गुलाम नहीं आजकल आपके पास नौकर, कोई आपने बंदा ऐसा सुना होगा कि वो अपनी जायदाद में नौकर को आधा आधा शरीक कर ले, अपने बैंक बैलेंस में उसका भी नाम लिखवा दे अपने अकाउंट में कि भी तुम भी मेरे साथ ही इक्वल हो गए, जितना मर्जी तुम निकालो, फअंतुम फीहि सवाउन, बराबर हो, बराबर अपने पार्टनर बना के उसको रख ले अपने नौकर को। हालांकि हालांकि नौकर तो फिर भी आपकी जिंस का है, आपके जैसा एक इंसान ही है, आप में और उसमें तो सिर्फ इतना फर्क है कि आपके पास चार पैसे अल्लाह ने आपको ज्यादा दे दिए और उसको नहीं दिए, सिर्फ इतना फर्क है, वरना आपके जैसे उसकी भी आंखें हैं, उसकी खाता भी वैसे है, पीता भी वैसे है, उसकी जरूरियात भी वैसे ही हैं, उसकी खुशी गम ये चीजें सब उसके साथ भी वैसी ही चीजें लगी हुई हैं जो आपके साथ लगी हुई। जैसे वो बेबस है उसी तरह आप भी मौत के सामने, बीमारियों के सामने, गमों के सामने आप भी उसी तरह बेबस है। ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है सिवाय माल के डिफरेंस के, और क्या डिफरेंस है? फिर भी आप उसको अपने साथ शरीक नहीं करते, बराबर नहीं उसको बिठाते, आ जा भाई तू भी मेरी साथ मेरे बिजनेस में उतना मेरा पार्टनर बन जा। तखाफूना हुम कखीफतिकुम अनफुसकुम, अल्लाहु अकबर, के तुम डरते हो इससे माँ ने डरना तुम्हारे अपने जैसों से कि तुम उनको ऐसे जो तुम्हारे अपने जैसे हैं ना, इंसान अपने जैसों के साथ भी थोड़ा वो कर लेता है कि जो है ये मेरे जैसा, ये मेरे बराबर का, इससे भी इंसान को होता है कि कहीं ये मेरे से आगे ना निकल जाए, या ये होता है कि ये मेरी मुखालफत कर लेगा, या ये मेरे मेरे सामने हो सकता है खड़ा हो जाए, कभी मुझे कुछ ऐसा कह दे, कभी मेरी मेरे अगेंस्ट हो जाए, उनसे फिर भी इंसान को थोड़ा उनका लिहाज रख लेता है जिसको कहते हैं। लेकिन नौकर का तो बिल्कुल ही आपको ये नहीं होता, उस गुलाम का तो बिल्कुल ही आपको कुछ नहीं होता। तुम अपने लिए अगर ऐसा नहीं करते कि अपनी प्रॉपर्टी में, अपने अकाउंट में, अपनी चीजों में उसको शरीक ठहरा लो, तुम अपने लिए जब ये नहीं सोचते तो ये बताओ कि तुम अल्लाह के लिए कैसे कर सकते हो कि उसके पार्टनर हैं, जबकि आप ये देखें कि अल्लाह के तो सारे ही गुलाम ऐसे हैं कि जो उसकी ना जिन्स ना उसकी ना माफ करे उसकी जैसी कोई मिसाल है ही नहीं। जितने भी माबूदा ने बातल हैं, चाहे वो इंसानों में से हो, चाहे कोई पैगंबर हो, चाहे कोई पैगंबरों से बड़ा ऊपर का रुतबा तो किसी का भी नहीं हो सकता, चाहे कोई फरिश्ता हो, फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि वो एक जिन्स के हैं, या वो अल्लाह जैसे हैं, या अल्लाह ताला इनको कोई इख्तियार दे सकता है। कैसे, जब तुम नहीं देते, तुम उस अपने नौकर को नहीं देते कि तुम उसमें बराबर हो जाओ, उनसे खतरा रखो उनका, जैसे अपने अपनों के साथ खतरा रखते हो, अपने जैसों के साथ, जैसे तुम्हें खतरा होता है ना कि ये मेरी मुखालफत करेंगे, मेरे बराबर ना आ जाएं, मेरे से आगे ना निकल जाएं, तो तुम अपने नौकरों को तो इस तरह से देते नहीं हो कि वो तुम्हारे बराबर इस तरह बैठ जाए, इतना ये ऐसा भी ना मेरे साथ हो जाए कि ये मेरे इक्वल आ जाएंगे, इतना भी नहीं उनके साथ रखना चाहते अपने नौकरों के साथ, और अल्लाह के शरीक ठहरा देते, जबकि अल्लाह ताला का साथ उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं, कहां वो रब तो कहां ये बंदे। और जो इससे भी ज्यादा गिर जाते हैं असफल साफिलीन में, नीचों से भी नीचे हो जाते हैं, कि जो फिर सांपों को और हाथियों को और बंदरों को और दरख्तों को और आग को अल्लाह का शरीक बना के बिठा देते हैं और कहते हैं इनके पास भी कोई इख्तियार आते हैं। अल्लाह क्यों देगा उनको इख्तियार, तुम तो देते नहीं हो, तुम्हें तो दिया भी अल्लाह ने हुआ है, तुम्हारा तो अपना भी कुछ नहीं है, तुम तो उनको नहीं शरीक करते कि उनको अपने बराबर ऐसे कर लो, और ये कि तुम उनसे भी ऐसे डरना शुरू हो जाओ जैसे कि तुम अपने जैसों से डरते हो, तुम अपने नौकरों के साथ ऐसा नहीं करते, तुम अल्लाह के साथ ये सोच रहे हो कि वो ऐसा करेगा, और उसने कहीं हजरत खिजर को पानियों के ऊपर आजादी दे दी वो जो मर्जी करते रहे, कहीं अल्लाह ताला ने हजरत अली को दे दी कि वो जाके कहीं कहीं कोई अब्दाल है तो कहीं कोई कुछ है तो उनके पास भी खुदाई वाली सिफात आ गई, और वो भी जिसको चाहे बच्चे दें, जिसको चाहे रिस्क उछादा कर दें, जिसको चाहे रोक लें, ये अल्लाह उनको दे देगा इख्तियार। और फिर हम जाके ये सोचते हैं कि नहीं जी इनके पास भी इख्तियार है, नहीं जी ये भी कुछ कर सकते हैं, ये भी हमारा कोई नफा नुकसान कर सकते हैं, क्यों अल्लाह उनको इख्तियार देगा, तुम अपने साथ ऐसा करते हो। कज़ालिक नुफस्सिलु आयाति लिक़ौमिन याक़िलून, इसमें इतनी खुली बात है ना, ये अल्लाह ताला ने खोल के रख दी अपनी आयात उन लोगों के लिए जो अकल रखते हो, अगर तुम्हारे अकल हो तो ये बात तुम्हें समझ आ जाए। कितनी देखिए सिंपल सी एक एग्जाम्पल है ये, अल्लाह का शरीक ठहराना अकली लिहाज से भी साबित नहीं होता, कि इंसान अकल ही थोड़ी यूज कर लेना तो वो कहेगा कि नहीं अल्लाह का कोई शरीक कैसे हो सकता, क्यों अल्लाह देगा इनको अपनी खुदाई में शराकत, क्यों देगा, क्यों उनका अपना पार्टनर बनाएगा कि इनको थोड़े भी चलो मैं इनको भी कुछ दे देता हूं कि ये भी मेरे पार्टनर बन जाए। बल इत्तबा, बल्कि पैरवी की, किसने, अल्लदीना ज़लमू, उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया, यानी जिन्होंने शिर्क किया ना, उन्होंने पैरवी की किस चीज की, अहवाअहुम, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की है, असल में ये शिर्क भी किया है अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलना, और कैसे, बिग़ैरी इल्म, कोई इल्म नहीं है, कोई इल्म नहीं, बगैर इल्म के बस जिधर अपनी ख्वाहिशात चला रही है उधर चल रहे हैं। यानी ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिर्क किया, ये बस इन्होंने कोई दलील नहीं है इनके पास, कोई इनके पास इस चीज का प्रूफ नहीं है, दुनिया के अंदर कोई एविडेंस नहीं है, कोई निशानी नहीं है, कोई पैगंबरों ने नहीं आके बताया, कोई किताब नहीं, कोई तो चीज हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये अपनी इनकी ख्वाहिशात हैं जिनके पीछे चल रहे हैं। इससे पता चलता है कि जब इंसान के पास बेगैरी इल्म आया ना, इल्म नहीं होता ना जब इंसान के पास, तो वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे ही चलता है। आप खुद सोच लें, वो जमाना जब आप कुरान नहीं पढ़ते थे, आपके पास इल्म जब नहीं होता था, तो किस चीज को फॉलो करते थे? ख्वाहिशात को, राइट? जो दिल किया कर लिया, जो दिल में आ गई वो करने बैठ गए, जो नहीं दिल में आई नहीं दिल में समाई, जो समझ में नहीं आई, जो जो बस दिल को नई चीज लगी नहीं की, जो लग गई दिल को बस करने लग गए। तो कोई यानी कोई ऐसा नहीं कि कभी कोई सोचना, कोई समझना, कोई कोई कहीं से अल्लाह की किताब को कंसल्ट करना, कोई कोई बात हिकमत की इसमें से निकालना नहीं, बस ख्वाहिश, जो ख्वाहिश ने कह दिया। तो जब भी इंसान के पास इल्म नहीं होता, वो भटकता ही रहता है अपनी ख्वाहिशात के पीछे। उसका कोई असूल थोड़ी होता है, ख्वाहिश का क्या असूल होता है? ख्वाहिश तो आज मेरी ख्वाहिश कुछ हो गई, कल कुछ और होगी, तो ख्वाहिश का तो कोई असूल नहीं होता। ऐसे लोग बस फिर शिर्क कर रहे हैं, ना कोई प्रूफ है, ना कुछ है, ना कोई कायदा ना कानून, बस करते जा रहे। फमई यहदी मन अदल्लाह, किस कौन हिदायत दे सकता है उसको जिसको अल्लाह गुमराह करते। अल्लाह कैसे गुमराह करता है कि ये अपनी हठधर्मी में लगे हुए ना कि बस इसी रास्ते पे हमने चलना, खुद भटकना चाहते हैं अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगे हुए, तो अल्लाह भी उनके लिए वही रास्ते खोल देता है। इसमें हम ये नहीं कह सकते, हम खुद नहीं कभी ये बात, ये गुस्ताखी की बात होगी अगर हम कहेंगे अल्लाह ने जी उसको गुमराह कर दिया, या अल्लाह ने मुझे गुमराह किया, मैं तो नहीं, ये गुस्ताखी है। समझ आई? अल्लाह ताला अपने लिए खुद ये अल्फाज इस्तेमाल कर ले तो हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला ने तो हिदायत और गुमराही के रास्ते दिखा दिए थे। अगर कोई चूज करता है गुमराह होना, तो अल्लाह ताला उसके लिए वही रास्ता खोल देता है। लेकिन हम खुद नहीं अपने तौर पर यह कहेंगे। तो जो इल्म के बगैर बस ख्वाहिशात के पीछे चल पड़ा, वो गुमराह हो गया। वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनको तो कोई मददगार नहीं होगा। जाहिर ही बात है, जो खुद ही चलना चाहता है उसको तो कोई दिखाए भी रास्ता तो वो कहता मैंने मानना ही नहीं, उसकी कौन मदद कर सकता है? जो दिल के दरवाजे ही बंद कर ले और बस उसने ये ठान लिया, मैंने जी मेरे जो दिल में आया मैंने वही करना। जैसे मेरे अभी किसी ने रिसेंटली ये बात की, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, ये जो आज का फितना मुनकरीन है हदीस का, कि वो कहते हैं जी हम कुरान वाले हैं, हम बस कुरान पे चलते हैं, इसके अलावा हमें कोई ना चीज की जरूरत है, ना हम किसी और चीज को मानते, यानी ना हदीस को मानेंगे, ना कोई सुन्नत, ना कुछ। अब क्या करेंगे? ये ख्वाहिशात का रास्ता है, इसलिए कि उसके बाद कुरान की मनमानी इंटरप्रिटेशन। हाँ माशाल्लाह, हम खुद ही इतने वो हैं कि हम अरबी सीख के खुद ही कुरान को समझ जाएंगे, हमें हदीस की जरूरत ही नहीं कि जो हमें जिससे हमें कुरान समझ आए। हाँ जी, सलात का मतलब तो डिक्शनरी में वाकई दुआ है, सलात का मतलब दुआ है, तो ठीक है जी, हम तो दुआ करते रहेंगे, हमें नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ये क्या है? ये ख्वाहिशात के रास्ते बेगैरी इल्म, इल्म के बगैर, ना पता है हदीस कैसे कंपाइल हुई, हदीस कैसे लिखी गई, हदीस कैसे हम तक पहुंची, कुछ नहीं पता। जिसके मुंह में आता है जो बोलता जाता नहीं जी, वो तो बाद में लिखी गई, वो तो जी सेव ही नहीं हुई, वो तो जी ऐसे हो गई, आपको इल्म क्या है? ये सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी है। क्योंकि अब क्या होगा, अब हम जैसे हमारा दिल करेगा वैसे कुरान के तर्जमे तरोड़ मोड़ के कर लेंगे, यूं हदीस को तो हमने मानना नहीं। अब हमारा दिल कर रहा है कि हम ऐसे करें, हमारा दिल करता नहीं ना हम नमाज पढ़ना, ना हमें कोई इस तरह की कोई चीजों की पाबंदियां हमें अच्छी लगती हैं, तो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक वैसे कर लिया, बना लिया। जब रसूल की जात कोई निकाल दोगे ना आप, तो आपका दीन ही मुकम्मल नहीं होता। रसूल की जात के बगैर तो दीन मुकम्मल है ही नहीं, फिर बस ख्वाहिशात का रास्ता है, वो इस्लाम का रास्ता नहीं। फअकिम वजहका लिद्दीन हनीफा, अब ये सारी बातें करके, सारी निशानियां दिखा के अल्लाह ताला ने फरमाया, अब क्या करो, तुम अपना चेहरा दीन के लिए यकसू हो जाओ, दीन की तरफ अपना चेहरा कायम कर लो। चेहरे का मतलब क्या है? अपनी डायरेक्शन, नहीं कि फिजिकली सिर्फ हम वो कर लें, अपनी डायरेक्शन इस सीधे दीन की तरफ यकसू होके, यानी फोकस्ड हो जाओ, अब किसी और तरफ नहीं जाना। फअकिम, कि जो है ना ये फेले अमर है और ये वाहिद का सीगा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया और आपकी विसासत से हम सबको बताया गया, यानी आप कोई सी और रास्ते पे नहीं जाना, भी इस दीन के ऊपर बस फोकस्ड हो जाओ। हनीफ कौन होता है? जिसके अंदर किसी और की मिलावट ना हो, बस वो फोकस्ड हो, ये बस यही है और दैट्स इट, किसी और चीज को दिल में जगह ना दे। मुझे ये भी हो सकता है ये ठीक हो, ये क्या कहते हैं, जरा इनकी तरफ भी जाके देखे, नहीं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोकस ने, यही सही दीन है और हमने इसके ऊपर चलना और इसी की तरफ हमने अपना रुख कर दिया। ये नहीं कि आज इधर हैं तो कल को कोई और दिल में बात आई उस तरफ चले गए, परसों कोई और बात आई उस तरफ चले गए। फितरत अल्लाह, अल्लाह की फितरत को, अल्लाह की फितरत मतलब यानी क्या है, अल्लाह की तरफ से पैदा करदा ऐसी बुनियाद जिस पे उसने लोगों को पैदा फरमाया, वो है अल्लाह की फितरत। फितरत का मतलब, अल्लाह की फितरत मतलब क्या, जिस पे अल्लाह ने लोगों को पैदा किया, वो उसकी बनाई हुई फितरत है ना, यानी अल्लाह की बनाई हुई फितरत, अल्लती फतरन नास अलैहा, जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। यानी इसके दो माने हैं, एक फितरत से मुराद है इस्लाम यानी तौहीद, कि अल्लाह ताला ने हर इंसान जो उसकी फितरत है उसमें तौहीद रख ली, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ, इससे आपको ज्यादा समझ आएगा कि इंसान के अंदर प्रोग्रामिंग जो की हुई है ना अल्लाह ताला ने, वो तौहीद की हुई, उसकी जिबिल्लत के अंदर है, उसकी फितरत के अंदर है, कि उसकी अकल के अंदर यही बात है कि एक ही खुदा है। बाद में जब वो बड़ा होता है ना, तो माहौल के असरात, उसके पेरेंट्स उसको कैसे ब्रिंग अप करते हैं, वो सारी चीजें उसके ऊपर इफेक्ट करती हैं। फिर कोई जैसे हदीस में आता है कि इंसान पैदा होता है फितरत पे पैदा होता है, लेकिन उसके बाद उसके वालदैन उसको कभी यहूदी बना लेते हैं, कोई नसारा बना लेते हैं, ईसाई बना लेते हैं, तो लेकिन जो वो पैदा होता है वो नेचर पे पैदा होता है, यानी ट्रू जो दीन है तौहीद है उसके ऊपर पैदा होता है, उसकी अभी करप्ट नहीं ना हुई होती फितरत, उसकी जिबिल्लत जो उसके अंदर है नेचर उसकी करप्ट नहीं हुई होती, बाद में करप्ट होती है वो। तो ये एक माना हो गया। नंबर टू इसका माना है, फितरत का माना इस्तेदाद है, कैपेबिलिटी, यानी अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा तखलीक किया कि हर इंसान के अंदर ये कैपेबिलिटी रखी है कि वो अपने खालिक को पहचाने, उसको माने, ये उसके अंदर इस्तेदाद मौजूद है, क्या उसको ऐसी अकल दी, उसको ऐसी समझ दी, उसको ऐसी अंबिया भेजे, ऐसी और उसके अपने अंदर भी रखी हुई है ना, कि इंसान की तखलीक ही ऐसी है। अच्छा देखें, हर इंसान के अंदर आप हैरान होंगे, ये जो इतना वो बुतों के आगे पता नहीं क्या क्या करते हैं, उनको कैसे संवारते हैं, उनके आगे सजदे कैसे करते हैं, उनको ये क्या चीज है, ये क्यों इंसान करता है ऐसे। असल में अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर अपनी तलब रख दी, ये जो रूह है ना अल्लाह की तरफ से है ना, अल्लाह का अमर है ना, अमरुल्लाह है, तो ये इसके अंदर अल्लाह की तलब है, अल्लाह ने हर इंसान में अपनी तलब रखी है कि वो तलाश में है कि कोई एक एक खुदा हो मेरा, उसके आगे मैं झुकूं, उसके आगे कुर्बानियां करूं, उसे दुआएं करूं, हर अपनी मुश्किल वक्त उसके ऊपर फॉल बैक करूं, उसको उसको सपना सब कुछ बना लूं, ये चीज ये तलब होती है इंसान के अंदर कि कोई मेरा ऐसा हो। अब कोई लोग बुतों को बना लेते हैं, कोई लोग ये किसी महबूब की जुल्फ को बना लेते हैं कि कोई महबूब है, फिर उसके गीत गाते रहते हैं, कोई कुछ है, यानी आप ये देखिए कि ये सब किस वजह से होता है, आप ये इनको इतने मजनून होते देखते हैं ना, असल में वो तलब जो थी वो बजाय इसके कि वो अल्लाह की तरफ रजू करते और उससे सेटिस्फाई होती, वो कहीं और सेटिस्फाई हो रही है, वो कहीं बुत के आगे गिर रहा है, कभी किसी दरख्त के आगे पड़ा हुआ है, कभी किसी आग के आगे, कभी सूरज के आगे गिर जाता है, कभी कुछ करता है, और ये सब वजह क्या है, वो सेटिस्फेक्शन चाहता है उस तलब की जो उसके अंदर है, ये अल्लाह ने रख दी है ये, और अल्लाह ने ये कैपेबिलिटी उसके अंदर रखी कि वो पहचान सकता है अपने खालिक को, लेकिन फिर वो यहाँ पे आके مار کھا جاتا ہے جس وقت کہ وہ اور چیزوں کو ان سے متاثر ہو کے اپنے ماحول سے متاثر ہو کے وہ اس کے اندر لگ جاتا ہے. ورنہ اللہ نے رکھی ہے یہ اس کے اندر, ایسا نہیں ہے کہ بھائی اس بیچارے کا کیا قصور ہے اس کے اندر. تو دیکھیں اگر کسی انسان میں کیپیبلٹی ہی نہ ہوتی تو ہم کہتے ہیں اس کا کیا قصور ہے, یہ کیپیبل ہی نہیں تھا, اس کے اندر استعداد ہی موجود نہیں تھی خالق کو پہچاننے کی. نہیں, اللہ نے رکھی ہے. اسی وجہ سے اگر آپ کسی انسان کو مثلاً جنگل میں چھوڑ دیتے اور اس کے اوپر کوئی اثرات نہیں ہوتے, کوئی ایسے باہر ایکسٹرنل کوئی ایلیمنٹس اس کے اوپر اثر نہیں کرتے, تو وہ پہچان لے گا ایک دن, یہ کم از کم پہچان لے گا کہ کوئی ایک خدا ہے اس کائنات پہ غور کر کے, اور پہچان سکتا ہے. اس کے اندر اللہ نے یہ استعداد رکھی ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ تعالی کی خلق میں اس کی ساخت میں کوئی تبدیلی نہیں. ایک اس کا معنی یہ بھی کہ اللہ کی دی ہوئی فطرت یعنی حق کو پہچاننے کی جو انسان کے اندر صلاحیت ہے نا, کیپیبلٹی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. کافر ماحول, غلط ماحول, برا ماحول اس کو کافر تو بنا سکتا ہے, مشرک تو بنا سکتا ہے, مگر اس کی کیپیبلٹی کو فنا نہیں کر سکتا. اس کے اندر کیپیبلٹی رہے گی, اگر وہ حق دیکھنا چاہے گا, واقعی آنکھیں کھولنا چاہے گا, ان تعصبات سے نکل کے دیکھ سکتا ہے وہ. اب انسان خود ہی اپنے ماحول میں اتنا گم رہے, غافل رہے, خود کوشش ہی نہ کرے, کبھی سوچے ہی نہ, تو پھر ظاہری بات ہے اس کو حق نہیں ملتا. لیکن اگر کوئی چاہے گا تو مل سکتا ہے, کیونکہ یہ اپیل کرتا ہے ذہن کو. کیونکہ شرک, یاد رکھیں, اس کائنات میں شرک کی ایک بھی دلیل نہیں ہے. اگر کوئی ہو تو لا کے مجھے دکھا دے, ایک بھی دلیل نہیں ہے اس کائنات میں. توحید کی دلائل ہیں ہر طرف. عقل تمہیں اسی لیے تو دی تھی اتنی زیادہ, تمہیں بکری سے زیادہ, اونٹ سے زیادہ, گائے سے زیادہ عقل اسی لیے تو دی تھی کہ اس کو استعمال کرو اور اللہ کو پہچانو. ورنہ اس عقل کا کیا فائدہ اگر یہ اس کو یہی نہ سمجھ آئے انسان کو کہ کیا ایک خدا ہے یا اتنے سارے خدا ہیں. ذالک الدین القیم, یہ ہے درست دین, یہ ہے سیدھا دین. دین کیا چیز ہے؟ دین حنیف پر قائم رہنے کا کہا گیا, یعنی حنیف دین کی یہاں پہ یہ بات ہے جو دین القیم ہے, یعنی ایسا سیدھا کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے, اس میں کوئی کنفیوژنز نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی شکوک یا ایسی کوئی باتیں یا ایسی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں. دین کیا ہے؟ ایک خدا کی پرستش, ایک خدا کو ماننا, ایک خدا کی غلامی, ایک خدا کی طرف رجوع کرنا, جس کی تعلیم سارے پیغمبروں نے دی ہے, ایاک نعبد وایاک نستعین. یہ سیدھا دین ہے. خوشی ہے, غم ہے, زندگی میں کوئی مسئلے ہیں, کوئی چیز ہے, سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس رب کو بنانا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن کیا کریں, اکثر لوگوں کو یہ بات ہی نہیں سمجھ آتی, جانتے ہی نہیں ہیں ایک خدا ہے. سیدھی بات ہے, یہ غلامی صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے, رب کو ہی نہیں پہچان پاتے, اتنے اپنے ماحول سے متاثر ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ساری اتنی نعمتیں دی, وہ نعمتوں میں ہی اتنا گم ہو گیا کہ نعمت دینے والے کو ہی بھول گیا. منیبین الیہ, رجوع کرتے ہوئے طرف اس کے, یعنی اس کی طرف فوکس کر لو, اس کی طرف توجہ کر لو, اس کی طرف اخلاص سے رجوع کرو. یہ اب حکم دیا جا رہا ہے. اپنی میں چھوڑ دو, اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو. انابت یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں فیصلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے. وہ میں تو ہر وقت منیب رہتا ہے کہ میں کہیں اللہ کی مرضی کے خلاف نہ میرے سے کوئی کام ہو جائے, چاہے کمانا ہو, چاہے خرچ کرنا ہو, بولنا ہو, اٹھنا ہو, بیٹھنا ہو, خوشی ہو, غم ہو. وَاتَّقُوهُ, اور ڈرو اس سے, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور قائم کرو نماز. یعنی جب پہلے کہہ دیا گیا اپنا فوکس, اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لو, اس دین حنیف کی طرف موڑ لو, تو اب اس کو پریکٹیکلی بھی کر کے دکھاؤ نا, نماز قائم کر کے دکھاؤ. یہ پریکٹیکلی آپ کا یہ چیز ہے. ولا تكون من المشركين, اور مشرک نہ ہو جانا. جب انسان اپنی زندگی کا فوکس بدل لیتا ہے, سینٹر آف لائف, مرکز زندگی بدل لیتا ہے, کسی اور کو بنا لیتا ہے, وہی تو شرک ہے. جب انسان اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرنے لگتا ہے, تو وہی تو شرک آ جاتا ہے. جب انسان اللہ سے بھی زیادہ کسی اور سے ڈرنے لگتا ہے تو وہیں تو شرک آیا تھا. ولا تکونوا من المشرکین, دین کے معاملے میں حنیف رہنا, فوکسڈ رہنا, کسی کوئی ساتھ شامل نہ کرنا. من الذین فرقوا دینہم, وہ جو مشرک کون سے, جنہوں نے فرقوا دینہم, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دین کو. ایک فرق کرنا ہوتا ہے, تفریق کرنا, جدا کرنا. ایک ہوتا ہے راہ کے اوپر تجدید کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, جدا جدا کر دینا, بالکل الگ الگ کر دینا. یہ انہوں نے اپنے دین کو اتنا جدا جدا کر دیا, بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, کر دی. یعنی دین تو ایک تھا مگر لوگوں نے کیا کیا, اس کے بعد اس نے اس کو شریک اللہ کا بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی, اس نے اس کی پوجا شروع کر دی, سب نے اپنے اپنے دین بنا کے. اور حالانکہ سبھی شرک کر رہے ہیں, سبھی غلط ہیں, لیکن باطل سارے ہی ہیں, لیکن انہوں نے بھی سب نے ایک خدا کو نہیں پوجا بلکہ کیا کیا, الگ الگ. کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا, کسی نے آگ کو پوجا, کسی نے کسی اور کو پوجا. اتحاد کی صورت میں ہو سکتا تھا کہ سب ایک خدا کو پوجتے. آج کیا دنیا میں کہتے ہیں, جی یہ تو دین ہے نا, انہوں نے تو لوگوں کو بانٹ کے رکھ دیا, ایسا کرو سارے ہی ایتھیسٹ ہو جاؤ, سارے یہ مان لو کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں, اور یہ مذہب مذہب کو چھوڑو, یہ تو ہمیں بانٹتا ہے, سارے ہی لا مذہب ہو جاؤ. مذہب کی کوئی بات ہی نہ کرو, دین کی کوئی بات ہی نہ کرو, خدا کی کوئی بات ہی نہ کرو. خدا کوئی زندگی سے نکال دو گے تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہم سارے ایک ہو جائیں گے. حالانکہ اس سے ایک نہیں ہوتے, ایک خدا کو مانو گے تو سب ایک بن جاؤ گے. جس نے توحید کو چھوڑا اس کے بعد فرقے فرقے ہو گئے, اس لیے کہ وہ لوگوں کے خیالات کے پیچھے چلے, اور لوگوں کے خیالات تو کسی کا کوئی ہے, کسی کا کوئی ہے, کوئی اس کو بنا لیا, کسی نے اس کو بنا لیا, ہر ایک اپنا اپنا مذہب بنا کے بیٹھا, مختلف پارٹیوں میں بٹ گئے. اور کیا ہوا, کانو شیان گرو گرو ہو گئے. اور یہ دیکھیں نا, ہوتا یہی ہے جب ایک فوکس, ایک جو سینٹر ہوتا ہے, ایک مرکز سے لوگ ہٹتے ہیں تبھی یہ فرقے فرقے بنتے ہیں. جب اصل کو چھوڑو گے نا تو پھر گروہ میں بنو گے, اس کے خیالات, اس کے خیالات. اور آج دیکھیں سب سے زیادہ اس چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جو اختلافات ہوتے ہیں, جو بیس ہے, جو سب جو ہمارے دین کا کور ہے اس کے اوپر آتے نہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اختلافی, بہت معمولی معمولی چیزیں ہیں, ان کو پکڑ کے گرو گرو بنائے ہوئے, فرقے فرقے بنائے ہوئے. اس نے اپنا منہ ادھر کیا ہوا, اس نے اپنا منہ ادھر کیا ہوا, سب بٹ گئے. اگر آج بھی ایک رسی کو پکڑ لیں قرآن کی اور بیس کی طرف آئیں, قرآن و حدیث کی طرف آ جائیں واپس, تو پھر دیکھو یہ چیزیں ختم ہو جائیں. لیکن ان کی طرف نہیں آنا چاہتے, ہر ایک اپنی اپنی ٹکڑیوں میں بٹ کے رہنا چاہتا ہے. شخصیات اہم ہو گئی ہیں نا, پرسنالٹیز. اصل دین تو کہیں پیچھے ہی رہ گیا, وہ پرسنالٹی, کسی نے ایک امام کو پکڑ لیا, کسی نے دوسرے کو, اب بس وہ انہی کی بیس پہ الگ الگ ہو کے بیٹھ گئے, منہ موڑ کے بیٹھ گئے ایک دوسرے سے, اور دوسرے کو کافر کافر کہتے ہیں. یہ تو ان کا طریقہ تھا, شرک والوں کا بتایا گیا, وہ اصل دین سے ہٹے. آج مسلمانوں نے بھی اپنے دین کا یہی حال کر لیا. اصل میں جب اللہ کی ذات سے زیادہ اور چیزیں اہم ہو جاتی ہیں نا, تو پھر یہی ہوتا ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس کے اوپر خوش ہے. ہر گروہ یعنی اپنی اپنی اس میں مگن ہے, اور کہتا ہے ہم سے زیادہ بیسٹ کوئی ہے نہیں, ہم ہی سب سے اچھے ہیں اور ہم ہی ٹھیک ہیں. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ, جب چھو جاتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف, دعوا ربهم منيبين إليه, پکارتا ہے اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف. یعنی پھر اتنا جیسے یعنی سعادت مند بن جاتا ہے انسان, پھر بڑا اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے. جیسے کافروں کا بھی بتایا گیا, شپس میں جاتے تھے, جس وقت اس وقت مصیبت آتی تھی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتے تھے. آج بھی مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو جب مصیبت آتی ہے تو پھر دیکھو بس تہجدیں بھی شروع ہو گئی, وظیفے بھی شروع ہو گئے سب, بلکہ اور تو اور لوگوں کو بھی بلا کے آیت کریمہ ہو رہی ہیں, یہ ہو رہے ہیں, ओ भाई वो आयत करीमा तो पढ़ रहे हैं तो वो तो अपनी ही बख्शिश मांग रहे हैं उसके अंदर, अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। तुम्हारी मुसीबत कैसे टलेगी उनकी माफी मांगने से? उनके गुनाहों की वजह से थोड़ी तुम मुसीबत में पड़े हो। इंसान तो अपने गुनाहों की वजह से पड़ता है, अपनी शामत आमाल होती है। तो जो जब इंसान का ये रवैया हो जाए कि वो जिस मुसीबत में हो उस वक्त तो वो अल्लाह की तरफ बहुत रजू करे, और जब मुसीबत टल जाए उस वक्त अल्लाह को भूल जाए, जिसका आगे जिक्र किया गया कि उस वक्त सुम्मा इदा अदाकहुम मिन्हु रहमतन, जब हम वो चखाता है उनको अपनी रहमत में से, यानी अब सहूलियात हो गई, अब कोई नेमत हो गई, अब कोई ऐसी आसाइशें मिल गई, अगर कोई पहले मुसीबत थी तो वो टल गई, तो जूं ही आसानी आती है। इज़ा फरीकुम मिनहुम बिरब्बिहिम युशरिकून, उसी वक्त इनको शिर्क याद आ जाता है, फिर एक रोह इनमें से शिर्क शुरू कर देता है। क्या कहता है? और जी ये फलाने बस जी वो हमारे वो थे, उन्होंने तावीज़ दिया तो ये हुआ, बस जी उनकी करामत हुई तो ऐसा हुआ, ये फलानी मैं जगह पे गई थी वहां से तो किसी की मुराद पूरी हुए बगैर रहती नहीं है, बस उन्होंने झोली भर दी, ये फिर इस तरह की बातें आने लगती। ओके, जिस वक्त मुसीबत थी तब तो बहुत अल्लाह याद था, मुनीब थे, फिर हर तरफ से हट के बस फिर अल्लाह को ऐसा पुकार रहे हैं दिन रात एक किया हुआ, और खुशी में अल्लाह ही भूल गया, जूं ही मुसीबत टली अल्लाह भूल गया। अच्छा ये हदीस है कि जब तुम खुशी में अल्लाह को याद रखो वो गम में तुम्हें याद रखेगा, बल्कि खुशी के दिनों में अल्लाह को याद रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो अप एंड डाउन का नाम है, कल को कुछ और मसला आ जाएगा, परसों कोई और हो जाएगा, जिंदगी में तो ऐसे चलता रहता है। इंसान ये नहीं सोचता कि मेरा क्या अल्लाह से दोबारा नहीं वास्ता पड़ना, क्या मैंने दोबारा उसके दर पे नहीं जाना, मैं तो हर वक्त उसका मोहताज हूं, फिर वो कैसे भूल सकता है अल्लाह को, या फिर अपने आप को समझने लगता है। ये भी एक शिर्क है ना, कि अल्लाह की दीवी नेमत में या जो अल्लाह ताला ने मुसीबत टाल दी, ये भी एक रहमत का मजा चखाना है, उसी वक्त कहता जी मैंने ऐसे किया था, बस मेरी प्लानिंग हो गई, मैं गया, मैंने ये करा, फलाने डॉक्टर ने ऐसा कर दिया, फलानी जगह मैं इसको ले गया, मैंने बस पानी की तरह पैसा बहाया, तो फिर क्या उस वक्त तुम्हें अल्लाह नहीं याद रहता? तो यहां पे ये मतलब नहीं है, देखें फिर बाज़ दफा शैतान कहता है अच्छा खुशी में तो तुझे अल्लाह याद ना आया, अब गम आया तो तू अल्लाह की तरफ चल पड़ा, तो अब बस फिर इस वक्त भी अल्लाह की तरफ जाने की जरूरत नहीं, ये मतलब नहीं है यहाँ पे, भाई हमने अल्लाह के दर पे नहीं जाना तो और किधर जाना है, उसके सिवा हमारा है कौन। मतलब ये है कि देखो एक जैसा रवैया रखो ना, यकसा रहो, जब खुशी हो तब भी अल्लाह की तरफ आओ, गम हो तब भी अल्लाह की तरफ ही आना है, और हमने कहाँ जाना है, अल्लाह तेरे सिवा कौन है हमारा, हमने आना ही है तेरे पास, ठीक है। तो ये काफरों वाला तरीका है कि बस गम के वक्त तो अल्लाह याद आ गया, हम अपनी जुबान में ऐसे बंदे को मतलब ही कहते हैं, मतलब पड़ा तो फौरन आ गए, और मतलब पूरा हुआ तो फिर तुम कौन और मैं कौन, हमें तो पता ही नहीं आप हैं कौन। तो इसलिए ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि देखो खुशी में भी अल्लाह को याद रखो, जब आफियत के दिन हो, जब कोई तुम बेफिक्री की जिंदगी हो, जब कोई गम ना हो, तब भी अल्लाह की तरफ आया करो, तब भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ करो, सिर्फ फिक्र और गम में ना आओ, और बाकी टाइम अल्लाह से बेपरवाह हो जाओ, तब तो तहज्जुदें भी याद आ गई, और बाकी दिनों में फर्ज नमाज भी नहीं याद है, तब उस वक्त वजीफा ऐसा है कि हर वक्त अल्लाह का जिक्र हो रहा है, तस्बीह पकड़ी भी इतनी लंबी, और चलो बस तस्बीह तस्बीह है, और कोई चीज में इंटरेस्ट ही नहीं, और जब बस अपनी मुसीबत टल गई तो उसके बाद कभी याद ही नहीं है कोई तस्बीह करना। लियकफुरु बिमा आतैनाहुम, इसलिए वो शिर्क करते हैं कि अब वो नाशुकरी करें जो अल्लाह ने उनको अता किया, दिया अल्लाह ने, और अब तुम उसकी नाशुकरी कर रहे हो शिर्क करके। फता मत्ता हो, ठीक है फिर अगर यही करना है तो फायदे उठा लो, मजे कर लो, ये डांट है एक, ठीक है फिर जाओ मजे करो, फिर फसल फता लमून, अन करीब तुम्हें पता चल जाएगा, मौत का एक ही झटका आना है ना, दुनिया की ये सारी लज्जतें सारे मजे इंसान भूल जाएगा एक सेकेंड में, जो ही वो मौत की तलखी को चखेगा तो याद भी नहीं रहना कि जिंदगी में कभी कोई मैंने मजा किया था, ये मजे तो बस यहां के लिए थोड़ी देर का चस्का है, ये इतनी जल्दी भूल जाएंगे। जो ही फरिश्तों को सामने देखना, गैब का पर्दा उठेगा, वहां की दुनिया नजर आने लगेगी, तब पता चलेगा कि क्या करना था और क्या कर किया। अम अंजलना अलैहिम सुल्तान फहुवा यतकल्लमु बिमा कानू बिही युशरिकून, क्या हमने नाजिल किया कोई इन पर कोई दलील। फहुवा यतकल्लमु, तो वो बयान करती है, बिमा कानू बिही युशरिकून, साथ उसके वो शिर्क कर रहे हैं, क्या हमने इनके पास कोई दलील नाजिल किया है, कोई उनको सनद दिया है, कोई उनको प्रूफ दिया है, कोई पैगम्बरों ने आके इनको बताया है, कोई ऐसी कोई जोर, कोई कुव्वत, कोई बुरहान, कोई हुज्जत, कोई चीज तो इनके पास हो। हमने क्या ऐसी कोई चीज उतारी है कि वो इनको बता रही है कि हाँ भाई अल्लाह के साथ और भी शरीक है, तो फिर ये इस वजह से शिर्क कर रहे हैं। ये बात है, यानी कोई शिर्क की दलील है ही नहीं है। अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि हमने कोई उतारी है कि जिसकी बेस पे जाके ये शिर्क कर रहे हैं। कोई सबूत नहीं है इंसान के पास शिर्क का, ये अल्लाह ने कोई हुक्म दिया इनको, बेसनद चीज इख्तियार किया है। और फिर एक और सिनेरियो आया यहाँ पे, एक और तरह का आदमी है। एक आपने पीछे देखा एक कैरेक्टर है जो कि बस जी गम आए तो फिर अल्लाह अल्लाह याद आ गया, और गम खत्म हुआ तो चलो जी अल्लाह ताला को बिल्कुल भूल गया। अब दूसरा कैरेक्टर भी सुन ले, वाइजा लकनासा रहमत फरिहू बिहा, जब हम चखाते हैं लोगों को रहमत, खुश हो जाते हैं साथ इसके, बड़े खुश हैं, बड़े इतराते फिर रहे हैं। रहमत क्या है, यानी अब सेहत है, पैसे की रेल पेल है, रिस्क भी है, आसानियां भी हैं, फरवानियां भी हैं, सब अच्छा चल रहा है, यानी एवरीथिंग गुड, ठीक है, जिंदगी बड़ी स्मूथ चल रही है। फिर क्या, इतने फूले समा रहे हैं, तकब्बुर आ गया है, बस अपने आप को बड़ी चीज समझ रहे। याद रखें, जो खुदा फरामोश होता है ना, जो अल्लाह को भूला होता है, जब उसको नेमत मिलती है तो वो मुतकब्बिर हो जाता है। देखिए ना, अब उसको खुदा तो याद है नहीं, खुदा को तो वो नहीं कुछ समझता, उसकी याद में ही नहीं। अब नेमत मिली तो उसको तो लगता है बस मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही ये डिजर्व करता हूँ, मेरे ही कोई कर्म ऐसे हैं कि जिसकी वजह से मुझे ये सब मिला हुआ है, मैं बड़ी चीज हूँ। जो खुदा को भूला होता है उसका ये रवैया होता है। जब इंसान के ऊपर रहमत, अल्लाह ताला फरमाते हम चखाते हैं, अल्लाह देता है रहमत का मजा, तो वो उस वक्त फूले नहीं समाता। वइन तुसिबहुम सय्यतुन, और फिर कोई मुसीबत अगर आ जाए, वो भी किस वजह से, अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, बिमा कद्दमत अयदीहिम, इनके अपने करतूतों की वजह से, जो ये जिंदगी गुजार रहे थे अल्लाह को भूल के, इनके अपने हाथों ने जो आगे भेजा उसकी वजह से, तो क्या होता है, इदा हुम यकनातून, तब वो फौरन मायूस हो जाता है, दफातन मायूस हो जाता है। फिर कैसी मायूसी थी, अच्छा देखें, ये कैरेक्टर पहले वाले से भी ज्यादा बदतर है, इसलिए कि वो पहला वाला मुसीबत में तो चलो अल्लाह की तरफ आ गया ना, और आपने कुछ लोग देखे कि अच्छा जब अच्छा सब चल रहा है तब भी अल्लाह नहीं याद होता उनको, जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती तब भी नहीं उनको अल्लाह याद आता, तब मायूस होके बैठ जाते हैं, हाँ हमारा तो अभी कुछ अच्छा होना ही नहीं, और जी बड़ी दुआएं मांग के देख ली कुछ नहीं होता, और हम तो बड़ी बड़ी जगह फिरे हैं, कुछ कोई सी हमने नहीं जगह छोड़ी, कुछ नहीं होना, अब हमारा तो कोई सही चीज हो ही नहीं सकती, अस्तग़फिरुल्लाह, हमारा घर देख लिया था अल्लाह ने कि भाई हमारे घर पे ही मुसीबतें आ रही है, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया जिसके ऊपर मेरे ये आ रहा है मुसीबत मेरे ऊपर। यानी उस वक्त भी अपना रवैया नहीं देखना, अपने आप को नहीं देखना कि हमने कुछ गलती की है, अल्लाह पता नहीं, अल्लाह ताला हमें झंझोड़ के अपनी तरफ लेकर आना चाह रहा है। देखिए आप इसको ऐसे मिसाल से समझे, आपका बच्चा अगर माचिस से खेल रहा है, आप क्या करते हैं, उसको मना करते हैं, नहीं करो नहीं करो, नहीं सुन रहा वो, फिर क्या करें, कान से पकड़ के एक थप्पड़ लगा के कहते हैं इधर आओ, मैंने तुम्हें अभी मना किया, ये पता है तुम क्या कर रहे हो, आग से आग लग जाएगी। अल्लाह ताला जब देखता है ना बंदे को कि वो आग से खेल रहा है, अपनी जिंदगी को आग लगा देगा, तो अल्लाह ताला उसके लिए वार्निंग साइंस देते हैं, उसको कई चीजें दिखाते हैं, वो नहीं समझता तो अल्लाह कोई मुसीबत भेज देता है कि अब तो ये ठोकर खाएगा तो फिर समझ लेगा। देखिए ना, एकदम इंसान चला चला जा रहा है, उसको पता ही नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, एकदम ठोकर लगती है तो फिर वो जरा होश में आता है, ओ ये मैं किधर जा रही, अल्लाह ताला उसको उससे बचाना चाहता है, या फिर उसके गुनाहों को अल्लाह ताला यहाँ पे दुनिया में ही धो देना चाहता है मुसीबत भेज के। ये दो चीजें होती हैं जिसकी वजह से मुसीबत आती है, यहाँ पे क्या, बिमा कदम तईदीम, उनके अपने हाथों की कमाई की वजह से कुछ ऐसे गलत काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला नहीं चाहता ये अपनी जिंदगी को जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं, इनको अल्लाह ताला بچانا چاہتا ہے, یہاں اللہ ان کی یہاں پہ وہ بات تو ایک ہی ہو گئی, یہیں پہ ان کے گناہوں کو دھونا چاہتا ہے, ان کو اپنی طرف ان کا رخ کرنا چاہتا ہے. الٹا وہ بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف آئیں وہ بالکل مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم بھی نوٹ کریں کہیں ہماری ایسی تو نہیں حالت ہوتی کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو بس ایسے لگتا ہے نہیں اب کبھی بھی نہیں ٹھیک ہونا, اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں نا اس بندے کا پتہ چل رہا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کتنا ویک ہے, اتنا ویک ہے کہ ذرا ذرا سی چیز کے اوپر بس ہر چیز کو بھلا دیتا ہے, اللہ کو ہی بھول جاتا ہے. اگر اس کو خوشی مل رہی ہے تو بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے الٹا وہ اترانا شروع ہو گیا. اگر اس کے اوپر غم آیا تو بجائے اس کے کہ ابھی صبر کر لے, ابھی اللہ کی طرف رجوع کر لے, ابھی اپنی زندگی کو فکس کر لے, الٹا وہ مایوس ہو گیا. یہ جو مصیبتیں بھی زندگی میں ہوتی ہیں نا, بعض دفعہ انسان کے لیے ٹیسٹ ہوتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل انبیاء کے لیے ان کے نہ کوئی گناہوں کی بات تھی, نہ ہی وہ کوئی غلط راستے پہ جا رہے تھے, اللہ نے ان کو اپنی طرف لے کر آنا, ان کے لیے کیا ٹیسٹ. تو بعض دفعہ آزمائش بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے, لیکن انسان اس وقت اتنا بے قرار ہو جاتا ہے, اتنی بری باتیں منہ سے نکالنے لگتا ہے, گلے شکوے شکایتیں اللہ سے, اللہ نے ایسا کیوں کر دیا میرے ساتھ, یہ کیوں کر دیا, بالکل مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے. مایوس ہو جاتا ہے بجائے رجوع کرنے کے. یہ بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے. اور مایوسی آپ کو پتا ہے نا کفر ہے. کفر کیسے ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مایوس بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا, اللہ کے ہاتھ میں یہ پوسیبل نہیں ہے اس کے لیے بھی کرنا. استغفر اللہ, تم ایسا سوچتے ہو؟ وہ اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے, ہاں وہ رات میں سے دن کو نکال سکتا ہے, تو تمہاری اندھیری رات کو وہ دور نہیں کر سکتا. تم یہ سوچتے ہو اس کی قدرت میں نہیں ہے, اس کی طاقت میں نہیں ہے, وہ قادر نہیں ہے؟ استغفر اللہ. جو انسان ایسا سوچے وہ پھر کفر کرتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے مایوسی کفر ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ بے شک اللہ پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور اندازے سے دیتا ہے, یعنی جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے کم کرتا ہے. دونوں کا ہی امتحان ہے. یہ نہ سوچیں کہ وہ اچھا ہم دیکھتے ہیں کسی کی جاب چلی جائے, ہم کہتے ہیں جی آپ کے بس اللہ کا امتحان ہے آپ کے اوپر. او اللہ کے بندو, جس کو مل رہا ہے نا اور جس کو اللہ نے بڑا پھیلا کے دیا ہوا ہے, اس کا بھی امتحان ہے. یہ ہم بھول ہی جاتے ہیں, اس کا بھی امتحان ہے. دونوں کا ہی اللہ امتحان لے رہا ہے, دونوں کا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کا چاہے کشادہ کر دے اور جس کا چاہے تنگ کر دے. وہ جس کا تنگ ہوتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نعوذ باللہ مجھے کوئی بھول گیا. نہیں, اللہ تمہیں بھولا نہیں ہے. کسی کو وہ رزق دینا نہیں بھولتا, نہ وہ کسی پہ ظلم کرتا ہے, نہ وہ بخیل ہے. وہ تمہارا رزق اگر تنگ ہوا ہے تو یہ تمہاری آزمائش ہے. وہ پوری کائنات کو رزق دیتا ہے, تمہیں دینے سے اس کی کوئی کمی آ جانی تھی. تو جس کا چاہے کشادہ کر دے, جس کا چاہے تنگ کر دے, اس کا مطلب انسان کی اپنی طاقت نہیں ہے اس کے اندر, اللہ ہے, اس کا اذن ہوتا ہے پیچھے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. ان نشانیوں پہ ایمان والے غور کریں. جس کا ایمان یہ ہوگا نا کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں رزق, وہ پھر رزق فروانی ہو جائے تو تکبر میں نہیں آئے گا کہ میرے اپنے کرنے سے ملا. رزق گھٹ جائے تو تب بھی مایوس نہیں ہوگا. اچھا, اب آگے بتایا گیا کہ کن لوگوں کو کے اوپر سپینڈ کرنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کا چہرہ پائیں, اللہ کی رضا پائیں, یا آپ چاہتے ہیں وجہ اللہ آیا نا, تو یا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار آپ کو ملے. تو اس کا ایک طریقہ بتا دیا گیا. دوسرے رزق کی بات ہوئی پہلے, تو اب بتایا گیا رزق کو کدھر خرچ کرنا. جو تمہیں اللہ رزق دیتا ہے تو اس میں صرف تمہارا حق نہیں ہوتا, کسی اور کا بھی حق ہے. فآتِ ذی القربیٰ حقہ, سب سے پہلے قرابت دار کے بارے میں کہا گیا کہ قرابت دار کو اس کا حق دو. ایک تو آپ یہ بات نوٹ کریں, یہ نہیں کہا گیا اس کے اوپر احسان کر دو, دے کے یہ ہمارا احسان ہے تم پہ, وہ ہمارے ٹکڑوں پہ پلے ہو, ہم نے ہی تمہیں دیا ہے, یہ تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا, ہم نے ہی ان کو پڑھایا لکھایا کھلایا پلایا, ہم نے ہی ان کے سارا کام کیے. نہیں, آپ نے نہیں کیے, یہ ان کا حق تھا. اللہ نے ان کا حق آپ کے رزق میں رکھ دیا تھا, تو احسان کوئی نہیں ہے, یہ حق تھا. رشتے داروں کا بھی حق ہوتا ہے. और रिश्तेदारों में कौन कौन है? देखें, रिश्तेदारों में अगर आप करीबी से शुरू कर लें तो औलाद और ऊपर माँ बाप, औलाद में यानी बीवी बच्चे और ऊपर माँ बाप, इनका सबसे पहले हक हुआ। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम अपनी बीवी पे खर्च करते हो, जो तुम उसके मुंह में एक लुकमा डालते हो, वो भी सदका है, वो भी एक नेकी है। यानी अब ये नहीं कोई कह सकता कि जो गरीबों को देना है वो ही बस वो है, जो बीवी बच्चों का हक अदा करता है, वालदैन का हक अदा करता है, ये भी उसकी एक नेकी है। लेकिन फिर बात वही है कि हक सिर्फ उन्हीं का हक नहीं है, बाकियों का भी हक है, मिस्कीन का भी है, इब्ने सबील का भी है, मुसाफिर का भी है। तो अच्छा, फिर ये सबसे करीबी हो गए। फिर उसके बाद उसके जो और रिश्तेदार, यानी आप समझ लें कि आपका एक इनर सर्कल है, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद आगे से आगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका करो। एक आदमी ने कहा या रसूलल्लाह मेरे पास एक दिनार है, आपने फरमाया इसको अपने आप पे खर्च करो। उसने कहा मेरे पास एक और दिनार है, आपने फरमाया इसको अपनी बीवी पे खर्च करो। उसने कहा मेरे पास एक और दिनार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी औलाद पर खर्च करो। ये समझ आ रही ना किस तरह से एक के बाद एक कैसी कैटेगरी है। उसने कहा मेरे पास एक और दिनार है, आपने फरमाया इसको अपने खादिम पे खर्च करो। उसने कहा मेरे पास एक और दिनार है, आपने फरमाया तुम इसके मसरफ को फिर खुद बेहतर जानते हो, फिर कहीं पे भी यानी खर्च कर लो। ठीक है, तो इसलिए जो जो मसारिफ हैं आप देख लें, अपनी अपनी जात पे भी खर्च करो, अपनी बीवी पे भी, औलाद पे भी, आगे अपने घर में जिनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है उनके ऊपर भी खर्च करो। एक जगह पे आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया तो आप फरमा रहे थे देने वाला हाथ ऊपर है, अपने अयाल से इब्तिदा करो, यानी अपने घर वालों से, जो अपनी फैमिली है उससे इब्तिदा करो, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारी बहन और तुम्हारा भाई, फिर जो तुम्हारे ज्यादा करीब हो, जो तुम्हारे ज्यादा करीब हो। ठीक है, तो ये दो दफा फरमाया, नसाई की ये रिवायत है। तो बीवी बच्चों के बाद माँ बाप और अबाउजदाद का खर्च भी इंसान के ऊपर आ जाता है, बशर्ते कि वो मोहताज हो, उनके ऊपर भी आ जाता, उनका भी आ जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अफजल सदका वो है जिसके बाद खुशहाली हो, यानी ऐसा ना करो कि तुम इतना दे दो कि उसके बाद खुद मोहताज हो, ऊपर वाला हाथ, या फिर मोहताज ना हो जाओ तो फिर उसके बाद पछताते रहो हाय मैंने क्यों दे दिया था। ऊपर वाला हाथ निचले हाथ से बेहतर है, और अपने अयाल से इब्तदा करो। औरत कहेगी मुझे खिलाओ या मुझे तलाक दे दो, और गुलाम कहेगा मुझे खिलाओ और मुझसे काम लो, और नाबालिग बेटा कहेगा मुझे खिलाओ तुम मुझे किस पर छोड़ रहे हो। ये बुखारी की रिवायत है, यानी ये हैं जिनके आपके ऊपर हैं जिम्मेदारी, अगर आप नई जिम्मेदारी निभाते तो ये रिश्ते भी देखें इनमें भी दरार पड़ जाती। और अगर खर्च नहीं करेगा आदमी जो उसकी जिम्मेदारी है, तो फिर जाहिर है वो कहेगी मुझे रखो या मुझे तलाक दे दो, नौकर भाग जाएगा, बच्चा कहेगा मुझे किसके ऊपर छोड़ रहे हैं, वो किसी और के दर पे जाके मांगेगा फिर क्या। तो उनको उनका हक दो, और मिस्कीन को हक जो है ना वो सारों के लिए आ रहा है, मिस्कीन को उसका हक दो, और इब्ने सबील को जो मुसाफिर है उसको उसका हक दो। अच्छा, यहाँ पे एक और बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मसलन हमारे पास इतना नहीं है कि हम किसी के ऊपर खर्च करें, तो फिर भी रिश्तेदारों के साथ बनिस्बत दूसरों के ज्यादा वो इस चीज के हकदार हैं कि उनके साथ अच्छा रवैया रखा जाए, उनकी खबरगिरी की जाए, उनकी खिदमत की जाए, उनकी जुबानी हमदर्दी की जाए, उनको तसल्ली वगैरह दी जाए, अगर माली इमदाद आप नहीं भी कर सकते लेकिन फिर भी उनके साथ एहसान का रवैया हो। तो अगर अगर मोहताज हैं तो जाहिर है माली इमदाद करेंगे, मगर हर एक के रिश्तेदार तो मोहताज नहीं होते ना, तो फिर उनका हक कैसे देंगे आप, कि ना फिर आप फिजिकली भी तो उनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, अपने बाज दफा किसी की खबरगिरी कर लेना ये भी एक बड़ी बात होती है। आप दूर रहते हैं, आप कुछ और नहीं कर सकते, माली तौर पे भी उनको आपकी जरूरत नहीं है, तो फिर आप इस तरह से उनके खैर खबर रखें, उनके दुख सुख में शरीक रहें। अच्छा, और मिस्कीन वो है जो हैंड टू माउथ होता है, उनको भी दो और मुसाफिर को भी, और मुसाफिर के साथ ही इसी में उलमा ने मेहमान को भी शामिल किया, वो भी मुसाफिर होता है, तो उसके ऊपर भी स्पेंड करने को भारी बोझ ना अपने ऊपर समझे कि हाय अब मेहमान आ गए और अब इतना इनके ऊपर खर्चा हो गया, ये भी उनका हक है, ये उसका हक है जो आपके रिस्क में अल्लाह ताला ने रखा हुआ था, वो अपना ही खाता है वो किसी का नहीं खाता, यानी अगर मैं मसलन किसी को खिला रही हूँ, किसी मेहमान को, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने खाने में से उसको दे रही हूँ, नहीं, अल्लाह ने उसका खाना मेरे खाने में डाल दिया था और मुझे इसका अजर भी दे दिया, सुभान अल्लाह। अब ये बात है ना कि जिसका यकीन हो, ईमान हो, ज़ालिका खैरुल लदीना युरीदुना वजहल्ला, ये उसके लिए है बेहतर उन लोगों के लिए जो चाहते हैं अल्लाह का चेहरा या अल्लाह की खुशनुदी, दोनों इसके माने, जो अल्लाह का दीदार चाहते हैं, जो चाहते हैं अल्लाह को राजी कर लें, उसकी खुशनुदी चाहते हैं, वो उनके लिए ये काम करना बेहतर है। नहीं, वो ये काम करें तो अल्लाह की खुशनुदी पा लेंगे, सुभान अल्लाह। इसका मतलब है कि जिस वक्त हमने देना हो, तो जब दिल तंग हो और दिल ना करे देने का, और खास तौर पे ऐसे रिश्तेदारों को जो कि हमारे साथ अच्छा ही नहीं करते, सबसे ज्यादा तो उनको देना नेकी है कि जो आपके साथ अच्छा ना भी करें फिर भी आप उनके साथ करें। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दिल तंग हो, तो उस वक्त सोचें कि मैं अल्लाह का चेहरा चाहती हूँ, मैं उसकी खुशनुदी चाहती हूँ, मैं तो उसके लिए देना चाहती हूँ, मैं उसको राजी करना चाहती हूँ, मैं उसका दीदार चाहती हूँ, तो फिर देखिएगा आपके लिए देना आसान हो जाएगा। वा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, कामयाब होने वाले ये लोग हैं जो ऐसे स्पेंड करते हैं, जो अल्लाह की खातिर देते हैं। अच्छा, मसला ये होता है कि हम दे भी देते हैं लेकिन उसके अंदर अल्लाह की खातिर वाली चीज नहीं होती, बस ऐसे ही मारे बांधेगा, अब क्या करें, हैं तो अब मांग लिया तो अब मैं क्या करूं, फिर मेरा नाम खराब होगा कि देखो इन्होंने हेल्प नहीं की उस वक्त, फिर ये ताने देंगे मुझे, फिर ऐसे हो जाएगा, तो उस वजह से हम उस डर की वजह से दे देते, लेकिन क्या अल्लाह की खातिर भी देते? क्या मेहमान को अल्लाह की खातिर भी खिलाते? मिस्कीन की अल्लाह की खातिर भी मदद करते? शायद मिस्कीन की तो कर लेते हो, लेकिन रिश्तेदार, खास तौर पे ऐसे रिश्तेदार जिनके साथ अच्छी बनती ना हो, उनके साथ करना अच्छाई भलाई, ये सिर्फ वो ही कर सकता है जो बंदों की खुशी के लिए नहीं, अल्लाह की खुशी के लिए करने वाला। अल्लाह ताला उन लोगों में शामिल करे जो उसकी खातिर, उसके चेहरे की खातिर देना जानते। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون